नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं NL चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट NL चर्चा। आज चर्चा में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराऊं। बहुत सारी सुर्खियां हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़े घटनाक्रम हैं इस हफ्ते, उन सब पर हम बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ जुड़े मेहमान हैं उनसे मैं सबसे पहले परिचय कराऊं। स्टूडियो में हमारे दो साथी शार्दुल और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
हेलो।
और इसके अलावा दो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। राजेश जोशी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले BBC और तमाम संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका, पहली बार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई और हमारे साथ स्वागत भी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और न्यूज लॉन्ड्री का, क्योंकि मैं न्यूज लॉन्ड्री में आज तक कभी शामिल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि मैं आपका फॉलोअर हूँ, आपको न्यूज लॉन्ड्री को देखता पढ़ता सुनता रहता हूँ, शुक्रिया।
और साथ में हमारे साथ भाषा सिंह भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत भाषा आपको भी, आपका भी चर्चा में,
शुक्रिया।
शार्दुल, बहुत सारी जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं बस दो चार जानकारियां आप लोगों को दे देता हूं न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ी, जो कि हमारे इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं, कंटेंट से जुड़ी तमाम चीज़ें, NL सेना से जुड़ी चीज़ें। एक तो मोदी 2.0, जैसा कि मैं बता रहा था बार बार, ये हमारा NL सेना प्रोजेक्ट था, इसकी पहली किस्त आ गई है और ये पूरी की पूरी कि सीरीज़ जो है इस बात पर है कि 2019 में भारत जहां खड़ा था और 2024 में जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मुहाने पर है, तब ये सारी चीज़ें, जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स थी, जो बड़ी योजनाएं थी जिनका दावा किया गया, जिनसे जिनकी शुरुआत हुई थी, वो कहां तक पहुंची हैं, उनका उनका क्या हासिल रहा है अब तक, इन तमाम बड़ी मोदी सरकार की योजनाओं का एक लेखा जोखा एक सीरीज़ के तहत हम कर रहे हैं, जिसका नाम है मोदी 2.0। एक विहंगम पूरा अवलोकन है उनकी योजनाओं का। तो हमारे इस NL सेना प्रोजेक्ट को आप मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन फंड जो प्रोजेक्ट है, जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का ये साझा इलेक्शन फंड है, और इस बार हमने तय किया है कि कोई एक बड़ा इलेक्शन फंड या NL सेना फंड ना बना के हमने छोटे 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 कई सारे फंड बनाए हैं, ताकि आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, वो स्टोरीज़, वो विषय जिनमें मुद्दे जिनको आप पसंद करते हैं, जिनमें आपकी अपनी रुचि है, जिनको आप चाहते हैं कि ये जनता के विषय हैं और आप तक पहुंचे या इस पर एक अच्छी खास डिटेल रिपोर्टिंग हो, उनको आप फंड कर सकते हैं। तो हमारे इस न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट के साझा इलेक्शन फ़ंड को भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक दो और जानकारियाँ, आपके लेटर्स कम हो गए हैं आना, एक लेटर है इस बार, लेकिन लेटर ज़रूर लिखें, आपके सुझाव, आपकी आलोचनाएं, आपकी जो हमारे कार्यक्रम को लेकर समीक्षाएं होती हैं, उससे हमें मदद मिलती है। newslaundry.com/podcast-letters के जरिए आप हमें लेटर चर्चा के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सीधा तरीका है कि आप सीधे podcasts@newslaundry.com पर हमें मेल कर दीजिए। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी। शार्दुल, जो सुर्खियां हैं उनके बारे में आप जल्दी से बता दें एक बार।
सुर्खियों से पहले एक और ज़रूरी सूचना, पिछले करीब 5 हफ्तों से आप लोगों को वेबसाइट्स पर पॉडकास्ट की लिस्ट अपडेट होने में और लॉगिन के समय स्क्रीन दिख रही है, वो इसलिए कि एक डीडॉस अटैक लगातार हमारी वेबसाइट पर चल रहा है।
जी जी।
तो इस वजह से हमारी पेवॉल के पीछे की सभी पॉडकास्ट फ्रीली अवेलेबल हैं सभी के लिए, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हम इस दिक्कत के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये अटैक अभी भी चालू है।
हाँ, इसी तरह का एक और छोटा सा समस्या हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें भी एक कुछ मैलवेयर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एक्सेस उस तक बंद हो गई है। कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द हम उसको रीगेन करें और फिर से हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर आपको तमाम जानकारियाँ और सूचनाएँ, खबरें आप तक उसके जरिए पहुँचाई जाएँ।
तो मैं फटाफट हेडलाइन पढ़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी हैं। लेह में पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का केवल पानी और नमक पर आमरण अनशन अभी भी जारी है। उन्हें यह हड़ताल, भूख हड़ताल करते हुए 17 दिन हो चुके हैं। बुधवार 20 मार्च को लद्दाख के कारगिल ज़िले में आधे दिन का बंद रखा गया था और उसमें समाज के सभी हिस्सों ने खुलकर हिस्सा लिया।
तो ये 21 दिन का आमरण अनशन चलना है।
हाँ, ये 21 दिन का आमरण अनशन है और उन्होंने कहा है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाएंगे। 21 दिन उन्होंने इसलिए रखे क्योंकि गांधी जी ने भी एक बार में 21 दिन का किया था,
सबसे बड़ा जो उनका वो
था। वांगचो की ये हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि लेह लद्दाख को राज्य या तो राज्य का दर्जा मिले या फिर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ उसे बनाया जाए, और जो सबसे जरूरी है लेह लद्दाख क्षेत्र को संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल किया जाए
ताकि स्पेशल स्टेटस मिल सके उसको।
और उनका कहना है कि भाजपा ने अपने पिछले दो चुनावी घोषणा पत्रों में ये कहा था कि वो करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं।
बहुत बड़ी रैलियां हो रही हैं लेह लद्दाख के इलाके में, करगिल के इलाके में इसको लेकर, और एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहा है। मुख्यधारा की मीडिया में जो राष्ट्रीय मीडिया है या जो देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाला का हिस्सा है, वहाँ पर सोनम वांगचु का आंदोलन और लेह लद्दाख में चल रही ये प्रदर्शन की खबरें कम आ रही हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें जाने चुनाव से पहले एक बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है एक हिस्से में, और इस लिहाज से भी बड़ा संवेदनशील है कि चीन और पाकिस्तान तमाम अलग अलग प्लेयर्स के साथ वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर सीमाएँ लगती हैं। तो इस लिहाज से सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है, क्यों ना मैं हमारे जो मेहमान हैं राजेश जी और भाषा, इन लोगों से भी थोड़ा सा इसके बारे में एक एक शुरुआती टिप्पणी सोनम वांगचुक और के आंदोलन के ऊपर ले लें। लद्दाख और लेह का इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सिक्स्थ शेड्यूल के तहत इसको लाने से क्या चीज़ें बदल जाएंगी, राजेश और भाषा?
मुझे लगता है क्योंकि मैंने भी जब से इसको ट्रैक करना शुरू किया और खास तौर से 6 मार्च के बाद से, उससे पहले वाली रैली पर भी हमने खबर ली थी, जिस तरह से यह चीज सामने आई है इसने दो चीजों को बहुत साफ किया है कि शुरू में ये लग रहा था कि कोई ना रास्ता निकल जाएगा, उस समय तक चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, और क्योंकि सोनम वांगचुक वह शख्स हैं जिन्होंने जब आर्टिकल 370 हटा था तब उसका स्वागत किया था, और उस समय लद्दाख के एक हिस्से में लोगों को लग रहा था कि इससे बड़ी राहत उनको मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे पिछला अगर 1.5-2 साल का अगर आप पूरा हिसाब देखिए तो लगातार धीरे धीरे करके इसको लेकर काफी आक्रोश, छोटी बड़ी रैलियां हो रही थी और लोग सवाल उठा रहे थे, और जिस तरह से सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मुद्दा इसको रखा, उसने इस पूरे इलाके के विकास को एक सेंटर फोकस में ले आए, और जो सारी की सारी अवधारणा थी 6th शेड्यूल को लेकर, उनके जो सुबह और शाम के वीडियो आते हैं उससे उन्होंने बड़े पैमाने पर ले लद्दाख कारगिल के इलाके के बाहर के लोगों को भी एक तरह से ट्रेन करने की कोशिश की, प्रशिक्षित करने की कोशिश की कि क्या आंदोलन है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लेह लद्दाख और कारगिल का यह इलाका इन 3 केंद्रीय मांगों को लेकर आंदोलन रत है, और सोनम के समर्थन में जिस तरह से लोग आ रहे हैं वो एक धीरे धीरे एक पॉलिटिकल शेप ले रहा है, और कल जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि कल उनकी तबीयत भी काफी खराब थी और वहां पे जो लोग उनके साथ हैं उनसे मेरी बात भी हुई फोन पे, तो उससे एक लग रहा था कि बहुत डेस्पिरेशन के लेवल पर अब यह सारा का सारा जा रहा है। उनको लग रहा था कि अंततः सरकार सुन लेगी, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई देश के गृह मंत्री के साथ और वो पूरी तरह से विफल रही, उससे एक दो मैसेज वो बहुत साफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अंत इस तरह का होना चाहिए। और कल उन्होंने इंदिरा गांधी का भी हवाला दिया क्योंकि इंदिरा गांधी भी, उनके पिता जब इसी तरह के आमरण अनशन पर बैठे थे तो गई थी और उन्होंने आश्वासन देकर उनका वादा पूरा करके उनका अनशन तोड़वाया था। तो उससे ऐसा लगता है कि यह आंदोलन अब एक पॉलिटिकल मूव में जा रहा है, क्योंकि अब बहुत साफ मैसेज है जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है कि जो लोग अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें हमें वोट नहीं देना चाहिए, और ये एक लोकतंत्र की लड़ाई में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, वही कॉल भी है सोनम वांगचुक।
राजेश,
तो सोनम वांगचुक है कौन, पहले तो ये आपके श्रोताओं को, बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन फिर भी याद दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि ये वो नेशनल हीरो हैं जिनको 3 इडियट फिल्म से बहुत पहचान मिली। इन्होंने जो इनोवेशन किए थे उससे इंस्पायर हुई 3 इडियट फिल्म्स, फिल्म जिसमें आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल किया था। नेशनल हीरो, राष्ट्रीय हीरो कब राष्ट्रीय विलेन में बदल जाते हैं या इरेलेवेंस की तरफ धकेल दिए जाते हैं। सोनम वांगचुक उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। पिछली बार भी इन्होंने लेह में, लद्दाख में ऐसी ही जमी हुई जब बर्फ थी, कड़ाके की सर्दी थी, तब अनशन किया था और अब फिर से उनको अनशन करना पड़ रहा है। उस अनशन का असर जो मांग कर रहे हैं, दो तरह की मांगे हैं। एक तो है लद्दाख को लेकर के जो सेक्शन शेड्यूल 6 को लेकर के उनकी मांग है। दूसरा एक बड़ा जो उनका मुद्दा है वो है चीन ने जिस तरह से लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा किया है, वो कंसर्न तमिलनाडु का भी है, वो कंसर्न केरला का और नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का भी है, और वही चिंता बाकी देश के लोगों की भी है। उन्होंने ये कहा है कि वो LAC तक जाके रैली करेंगे और इस बात को उजागर करेंगे कि इस तरह से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया और उस पर कोई चिंता नहीं करता है। तीसरा मुद्दा जो है वो और व्यापक है कि हिमालय में जिस तरह से विकास हो रहा है, उस विकास से किस कदर बर्बादी आ रही है। इन तीन मुद्दों पर, जैसे उनमें से कम दो मुद्दे तो पूरे व्यापक हिंदुस्तान की चिंता के विषय होने चाहिए थे, लेकिन मैं उत्तराखंड में इस समय नैनीताल जिले में अपने घर में बैठा हूं।
हाँ।
यहां सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या कोई मूवमेंट है, क्या हिमालय को बचाने को लेके या भारत की जमीन को बचाने को लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ बोला है, क्या कोई धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक के समर्थन में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है? ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट तब बदलेगा जब इसकी व्यापकता सोनम वांगचुक के प्रतीक में बदल जाएंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। कारगिल में जरूर ये हुआ है। कारगिल में अब वो आपके पास पता नहीं कितना टाइम है, वो एक अलग दुराभिसंधि है। शिया मुसलमान हैं और बुद्धिस्ट हैं, उनके बीच में दरार है। वो दरार जो है वो चौड़ी करने की कोशिशें पिछले 30 साल में लगातार हुई थी। एक बहुत राजनीतिक संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता वहां लद्दाख में रहे थे, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं इस समय, आप लोग जानते हैं, और वो इस दुराभिसंधि को और चौड़ा करने में वो सफल हुए थे। लेकिन सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन से या इस धरने से कारगिल की जनता और लेह की बौद्ध जनता, लद्दाख की जनता, जनस्कार की जनता सब मिल करके सामने आए हुए हैं, ये इसका पॉजिटिव असर लग रहा है।
ठीक बात है। एक और चीज़ जो समझ में आई जिसका इशारा आप दोनों ने किया और इंदिरा गांधी का जिक्र आया कि कैसे इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें जब वहाँ पर किसी तरह की मांग होती है तो नेता पहुँचे और वहाँ पर उसको उनकी समस्याओं को समझने की, उसे दूर करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार है या इसके जो मुखिया हैं उनको इन आंदोलनों से बड़ी एक चिढ़ होती है, चाहे वो किसानों का आंदोलन आप देखें या इस तरह के किसी भी। और जबकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2014 से पहले ये वो पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए लगभग हर तरह के आंदोलन के मंच पर जाकर काबिज हो जाती थी। अगर आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे और ये तमाम आंदोलन याद हों तो तमाम भाजपा के नेता जाकर उनके मंच शेयर करते थे, डैश शेयर करते थे। अब एक बहुत जेन्युइन मांग है, खासकर अगर आप एक लोकतांत्रिक नज़रिए के आदमी हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई एक स्टेट का स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, उनके चुनाव का क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का क्या, उनके राजनीतिक अधिकारों का क्या है। तो इस तरह की एक मांग पर टॉप जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई कान भी नहीं धरा जाता, कोई इस तरह के मैसेज तक नहीं दिए जाते हैं कि भाई हाँ हम आपसे कंसर्न हैं, आपकी बात। एक चीज़ तो जो समझ में आती है वो ये है, शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि लद्दाख में जो स्थितियां हैं, चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से चीन ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उस पर किसी तरह का वहाँ फोकस हो, मीडिया का अटेंशन जाए, तो एक कलई खुलने की स्थिति होगी। एक ये वजह हो सकती है या कुछ और भी वजह हो सकती है। शार्दुल और विकास, आप लोगों की एक टिप्पणी और फिर हम इस विषय से आगे बढ़ेंगे।
इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार में नैतिकता का तो कुछ बचा नहीं है, सरकार नैतिक रूप से तो कुछ करती नहीं है। और लद्दाख या जम्मू की बात करें, जब उनको दो हिस्सों में बांटा गया तो ये वैसा ही कुछ मामला था। दूसरा, सोनम जी को लेकर जो बात हुई, कल भी मैं देख रहा था जब उन्होंने अपना 16वें दिन की शुरुआत की तो उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने बताया यही कि उनका मेन मकसद यही था कहने का कि सरकार में संवेदनशीलता बिल्कुल जो है शून्य की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ ज़रूर एक दिन प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचेगी और ऐसा होगा कि ज़रूर इस बारे में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है और सिर्फ बाकी चीज़ों की बात नहीं है, एक चीज़ जिसकी ओर सर ने भी इशारा किया कि वहाँ प्राकृतिक का जिस तरीके से दोहन हो रहा है संसाधनों का, वो उससे बड़ा चिंता का विषय है। बजाय कि सिक्स शेड्यूल और बाकी चीज़ों की, क्योंकि सिलक्यारा में आपने देखा उत्तराखंड में जो ऑल वेदर रोड जब हम निकाल रहे थे सारी चीज़ें हो रही थी, तो किस तरीके से जब आप पहाड़ों से और उसके प्राकृतिक उन चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं तो उसके एकदम से कैसे परिणाम सामने आते हैं,
बिल्कुल,
तो वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। अभी कल परसों ही रिपोर्ट भी आई है कि ग्लोबल टेम्परेचर में जो है हम कमी नहीं ला पा रहे हैं लगातार।
शेड्यूल के तहत जो स्पेशल स्टेटस की मांग है वो शायद इन्हीं सब स्थितियों को प्रिजर्व करने की है। शायद
जो सोनम वांगचुक हैं वो प्राइमरीली मतलब पहले वो पर्यावरण एक्टिविस्ट ही हैं
जी,
और सिक्स शेड्यूल से क्या होगा, जो वहाँ पे हिल काउंसिल बनाई गई हैं
जी,
उनको अधिकार मिलेंगे अपने जिलों में किस तरह से वहाँ पर अगर वहाँ पे इंडस्ट्री आती भी है या कोई बिजनेस होता है तो लोकल कानून के, जैसे सिक्स शेड्यूल में उत्तर पूर्व के सारे प्रदेश आते हैं ट्राइबल एरिया, तो ये मांग इसीलिए है क्योंकि, और मुझे तो इसमें कुछ गलती नहीं लगती, लेकिन जो जैसा कि भाषा कह रही थी वांगचुक अपने दिन के एंड के वीडियो में, जब दिन ख़त्म होता है तो वीडियो डालते हैं, वो कह रहे थे कि अमूमन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर छठे शेड्यूल में ला देंगे अगर उन्हें तो विकास में बाधा आ जाएगी, तो किस जगह का विकास कैसे होगा ये स्थानीय जनता जो वहाँ की रहने वाली है, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो सबसे अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वहाँ की प्राकृतिक संपदा का, देखिए इंसान रहेंगे दोहन तो होगा, वो किस हद तक हो, सीमा में रहकर हो, ये लोकल लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और उन्हें उसका हक मिले कानून बनाने का, हिल जो लद्दाख में हिल काउंसिल है और कारगिल की अलग है, वही छठे शेड्यूल से उन्हें मिलेगा जो उन्हें नहीं दिया जा रहा। जो एक बात राजेश जी ने कही थी कि वहाँ पे जो बौद्ध और मुसलमान लोगों में जो मतभेद था, वो भी जो मैंने बंद की बात बताई उसमें, वो कारगिल जिले का था और उसमें बड़ी संख्या में मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, तो इसमें भी ये सब लोग साथ आ रहे हैं।
भाषा आप कुछ कह रहे थे उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया अचानक से, उस सवाल के साथ आप और राजेश आप दोनों से आखिरी कॉमेंट लूंगा मैं इस विषय पर कि एक ये भी चीज हो सकती है, क्योंकि कोई निर्णय लेना लद्दाख के मसले पर, कश्मीर के मसले पर, क्योंकि चीन के साथ लगती हुई सीमा है और बहुत संवेदनशील मसला है, और एक नतीजा उसका हम ये देख पा रहे हैं कि जब 370 हटाया गया तो किस तरह से चीन ने बहुत ही आक्रामक प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से सीमा को के का वायलेशन किया गया, जिस तरह से कब्जे की घटना सामने आई, पूरा पूरे लद्दाख के इलाके में जो स्टेटस को था उसको बदलने की कोशिश चीन की तरफ से हुई, उसको देखते हुए इस तरह का कोई भी छेड़छाड़ कहें या कोई बदलाव कहें सिक्स शेड्यूल के तहत इसको घोषित करना या ये सब करना, वो चीन को फर्दर नाराज़ कर सकता है, और कम से कम इस सरकार ने पिछले 5 साल में 6 साल में ये दिखाया कि इसके अंदर ना तो विल है, ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना नैतिक बल है कि ये चाइना से किसी तरह का कन्फ्रंट कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके सीधे हमें लड़ाई करनी चाहिए किसी से या किसी से, लेकिन अपनी जो ज़मीन है, अपना जो स्थिति है, उस पर किसी तरह की साफ़ सफाई, प्रधानमंत्री ने जितने साफ तौर पर कहें कि वास्तु स्थिति से उलट जाकर और बयानबाजी की कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है ना घुसकर बैठा है, वो झूठ कितनी बार कितने स्तर पर एक्सपोज हो चुका है, इसके बावजूद तो मुझे लग रहा है कि इस सरकार में या इस जो लीडरशिप है उसके अंदर चीन से किसी भी तरह की कन्फ्रंट करने की ना तो नैतिक ताकत है ना किसी और तरह की वो है, जिसकी वजह से ये स्थितियाँ जस की तस बनी है, जिसकी वजह से इस पर तमाम लोकतांत्रिक आंदोलन और एक बड़ा जन आंदोलन चलाने के बावजूद सोनम वांगचुक की सरकार चुप है।
देखिए मेरा थोड़ा सरकारों के बारे में जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूँ कि सरकारें खास तरह से व्यवहार करती हैं। इंदिरा गांधी वहाँ गई और उनके सोनम वांगचुक के पिताजी से उन्होंने बातचीत की, उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई, तो ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस दूध की धुली है। उसी कांग्रेस ने यूपीए ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, यही पी चिदम्बरम थे जिन्होंने डॉक्टर विनायक वगैरह को गिरफ्तार किया, खैर वो एक अलग मसला है। तो सरकारें खास तरह से व्यवहार करती हैं जब वो विपक्ष में होती हैं, दूध की धुली नजर आती है। बहरहाल जो आपका सवाल था कि क्या भारत सरकार सिर्फ इस वजह से फैसला नहीं कर रही है कि वो बॉर्डर का इलाका है और वहाँ चीन थोड़ा नाराज हो जाएगा, उसको नाराज नहीं करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये सरकार या कोई भी सरकार इस बात पर फैसले करती है ज्यादा कि उसका व्यापक हिंदुस्तान की जनता पर किस तरह का मैसेज जाएगा, क्या वो मैसेज उनके माफिक होगा या उनको उनको माफिक नहीं आएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वहां अपना वो पूरा अटायर पहन करके जाते ही रहते हैं और हर प्रधानमंत्री गए हैं, तो उसका असर ये होगा कि आप असर्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और चीन की उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दरअसल ये चीन का उतना मसला नहीं है जितना कि एक तरह की उदासीनता स्थानीय लोगों के प्रति है कि ठीक है ये मांग करते रहेंगे कितने दिन, 21 दिन प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, 22वें दिन तो वापस आएंगे, और असल में एक बड़ी लकीर खींच दी है सरकार को, अपना भरोसा है और उनकी पार्टी को कि अब उस लकीर को मिटा कोई नहीं सकता है। उस पर हम बाद में आएंगे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम बात करेंगे कि वो क्या मसला है कि इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या अमित शाह को आ गया है, उसकी वजह पर बाद में बात करें।
आखिरी टिप्पणी आपकी भाषा।
देखिए ये सारी जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक अहम पहलू जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया वो सीन से गायब हो रही है। हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ शेड्यूल की, और सिक्स्थ शेड्यूल में डालने का जो फैसला है या जो पहलकदमी सरकार को लेनी चाहिए, यह मांग आज सोनम वांगचुक नहीं उठा रहे हैं, इसका जिक्र वो बार बार करते हैं कि यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाला हुआ था, यह दूसरे नंबर पर उनके घोषणा पत्र का दूसरा नंबर हिस्सा है। यानी आप नीतिगत तौर पर इस बात पर सहमत थे कि यह शेड्यूल 6 मई हो, और उसी को बार बार वो कहते हैं कि ये आपकी गारंटी थी, ये आपका वादा था, इसी आधार पर लद्दाख के लोगों ने आपको इतने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। तो यहाँ एक जो बुनियादी चीज ये है कि बिना शेड्यूल 6 पर सहमति के भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं डाला था। तो ये चीज समझनी हमें जरूरी है कि ये जो मूवमेंट है अभी जो चल रहा है फिलहाल, वो इस बात को लेकर है कि आपने जो वादा किया, आपने जो गारंटी दी, वो आपने बिट्रे किया और उसे आप लागू कीजिए, क्योंकि इसको लेकर लंबी एक बहस लद्दाख जब से अलग हुआ 370 के बाद से तब से चल रहा है। और दूसरी बात मुझे लगता है जो बहुत अहम है कि यहाँ से कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ अगर लद्दाख में चिलचिलाती हुई सर्दी में वो लोग बैठे हुए हैं, वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि मणिपुर भी मोदी जी के लिए मैटर नहीं करता है, वहां डबल इंजन की सरकार है, तकरीबन 9-10 महीने से वहां पर आग लगी हुई है, लेकिन वो वहां नहीं जाते, वहां के लोगों को नहीं सुनते। तो दरअसल ये जो इलेक्शन का मूड में इस समय देश है, सिर्फ उसी की बात नहीं जो आप अतुल कह रहे थे, बात वह है कि इन्हें ये लगता है कि इस तरह के आंदोलनों से उनके चुनावी समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिहाजा आंदोलन चलते रहे, भूख हड़ताल होती रहे। और लद्दाख में एक जो बहुत अहम मसला है इससे जुड़ा हुआ जिसे सोनम कह रहे हैं, वह है कॉरपोरेट लूट का। तो अगर शेड्यूल 6 लाते हैं तो उनके जो मोदी जी के प्रिय कॉरपोरेट मित्र हैं, जिसको लेके कई छोटी छोटी बड़ी खबरें आई हैं, उनके जो हित हैं, उनको जो वादा है, उस वादे से वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे वहां पर गुस्सा आया है।
ठीक बात है। तो जल्दी जल्दी शार्दुल बाकी सुर्खियां आप निपटा लें, ये विषय पर हमने तो काफी बात की, अच्छी बातचीत हुई।
चुनाव आयोग ने बीते हफ्ते देश में होने वाले आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न होंगे। मतगणना के लिए 4 जून की तारीख मुलतवी की गई है, और पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में मतदान होगा।
4 तारीख जून जो है तय की गई है, या क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू के एक एक्सपर्ट राजेश जोशी बैठे हुए हैं, मुलतवी तो मेरे ख्याल से गलत शब्द होगा।
अच्छा,
उर्दू के एक्सपर्ट ना कहे मुझे भाई, उर्दू में दिलचस्पी है, एक्सपर्ट तो
नहीं। निश्चित की गई है।
तय की गई।
अगली खबर ताजा है और बीती रात की है। हम शुक्रवार को सुबह 11 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। और उनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस, अन्य सुरक्षा बल जिसमें RAF की भी बड़ी संख्या थी, वो बड़ी संख्या में उनके आवास और आसपास के इलाके में फैल गए। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो कथित आबकारी विभाग का घोटाला है जिसके अंदर लंबे समय से जांच चल रही है उसके अंतर्गत ही हुई है
जी।
इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही इसी मामले में कई महीनों से जेल में हैं, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन भी।
सत्येंद्र जैन इस मामले में नहीं, दूसरे
वो अपने उसके मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के
संजय सिंह इसी मामले में है,
संजय
विजय नायर इसी मामले में है जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज थे।
आम आदमी पार्टी ने देर रात इस गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी सड़कों पर आए और उन्होंने देश भर में आंदोलन चलाने की बात भी कही है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि 10:30 बजे हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले सुनवाई शुरू होनी थी और वो शुरू हो गई थी उच्चतम न्यायालय में। अगली खबर हम सबके फ़ोनों से जुड़ी हुई है। लगभग सभी को आईटी मंत्रालय की तरफ से विकसित भारत के व्हाट्सएप मैसेज आए थे, तो इस पर 21 मार्च को चुनाव आयोग ने आईटी मंत्रालय को इन मैसेजों पर तुरंत रोक लगाने को कहा और उन्होंने इस बाबत अनुपालन रिपोर्ट ले वो भी मांगी है। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जल्द से जल्द मंत्रालय दाखिल करे और आयोग का कहना था कि आचार संहिता लागू हो चुकी है उसके बाद ये मैसेज नहीं भेजे जा सकते। मज़े की बात यह है कि ये व्हाट्सएप मैसेज भारत के अलावा कुछ पाकिस्तानी, यूएई के लोग, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज़ में और ब्रिटेन के नागरिकों तक भी पहुंच गए, तो वहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है।
मोदी जी बहुत जल्दी दुनिया के विश्वगुरु तो हो ही जाएंगे इस हिसाब से।
अभी तक तो बधी पिट रही है, आगे भगवान जाने। खैर, उच्चतम न्यायालय से कई खबरें हैं तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। गुरुवार को न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफाई किया गया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंतर्गत फैक्ट चेकिंग यूनिट का, उसकी स्थापना पर फिलहाल रोक लगा दी है। और श्रोताओं को अगर याद हो पिछले साल अप्रैल में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय जो है उसने 2021 के आईटी कानून में संशोधन कर इस प्रावधान को उसमें जोड़ा था और न्यायालय ने कहा कि ये मामला बोलने की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय से दूसरी खबर है तमिलनाडु से जुड़ी हुई। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ही सख्त लताड़ लगाई। जो रवि वहाँ पे राज्यपाल हैं उन्होंने डीएमके के एमएलए आर पोनमुदी को सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने के बाद भी शपथ दिलाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख लिया और कोर्ट ने कहा, आई कोट, वी आर सीरियसली कंसर्न अबाउट द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर इन दिस केस, दिस इज नॉट द वे बिकॉज ही इज डिफाइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
बिल्कुल,
उन्हें वो कह रहे थे हमें गंभीर चिंता है इस बारे में कि गवर्नर किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
हाँ, ये कोई तरीका नहीं है क्योंकि वो सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट से अगली खबर है पतंजलि से जुड़ी हुई। पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण और उसके संस्थापक जो है बाबा रामदेव उन्हें झूठे विज्ञापन देने के मामले में अदालत में स्वयं उपस्थित होने को कहा और इसके दो दिन बाद, ये घटना है 19 मार्च की, दो दिन बाद यानी 21 मार्च को, दो दिन बाद पतंजलि के जो MD हैं बालकृष्ण, उन्होंने बिना शर्त इन सभी विज्ञापनों को देने के लिए माफ़ी मांगी और
सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए सशरीर पेश होने का आदेश दिया था।
हाँ, 19 तारीख को, और वो पेश हुए और उसके बाद उन्होंने दो दिन बाद बिना शर्त माफ़ी मांगी, उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की, उन विज्ञापनों को देने के लिए माफ़ी मांग ली है। इस हफ्ते उत्तर प्रदेश की अगली सुर्खी है, इस हफ्ते
चीज़ों को जो एक एक टर्म है, हालांकि मतलब एक पतंजलि से इस इतना बड़े टर्म को वो रिलेट नहीं करना चाहिए, फिर भी बनाना रिपब्लिक एक कॉन्सेप्ट है ना, कि कहा जाता है कि जब पैंडेमिक में पूरा देश फंसा हुआ है तब आप ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं और ऐसी दवाइयों का दावा करते हैं कि जिससे कोरोना सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और उसका इलाज के तौर पर उन दवाइयों को भेजा। सिर्फ यही नहीं, दो दो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर दो बार नहीं, एक बार नहीं, दो दो बार जाते हैं, उसका लॉन्च करते हैं, रीलॉन्च करते हैं,
स्टेज पर बैठे हुए दिख रहे,
बार बार एलोपैथी या दूसरी जो पद्धतियां उसको चैलेंज करते हैं, उसको फ्रॉड बताते हैं, और इतना मतलब आप उस लेवल तक टेस्ट करते हैं और विज्ञापन मतलब भ्रामक विज्ञापन, जिस पर ये बात सारा मामला हुआ कि आप अपनी दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापन, लोगों के अंदर फर्जी गलत तरह की धारणाएं पैदा करते हैं, गलत तथ्य बताते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को इस स्तर पर आकर कहना पड़ता है कि आप पेश हों और ये जो हमने आदेश दिया था उन आदेशों को मान्य था, तो उस लेवल तक स्ट्रेच किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को कि जहां पर आप ना चाहते हुए भी मान ले या कहने को मजबूर हों कि संस्थाओं की कोई वो नहीं है। एक गवर्नर है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शपथ नहीं दिला रहा है, एक कंपनी है जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बाद भ्रामक विज्ञापन कर रही है अपनी दवाइयों का, और दूसरे दवाइयों के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, और फिर चुपचाप धीरे से जाकर माफ़ी मांग ले रही है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कल जो घटनाक्रम हुआ उसके संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण, हम इससे बात करेंगे। हाँ।
मैं एक कहना चाहता हूँ पतंजलि वाले में, तो दशकों से जो विज्ञान सम्मत चीज़ें तय हो चुकी हैं उसको दता बता के, जैसे आपने कहा ना फर्जी दवाई, मुझे दवाई कहते हुए भी डर लगता है। बसंत ने रिपोर्ट की थी उसकी, उन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं की, सब झूठा था, बस मिक्सचर बेच रहे हैं। खैर, इस हफ्ते उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया। बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम को दो भाइयों साजिद और जावेद ने एक घर में घुसकर उस परिवार के दो बच्चों आयुष और आहान, जिनकी उम्र 11 और 6 साल थी, उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या का कारण अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। इन दोनों आरोपियों में से साजिद ने भागने की कोशिश की और वो पुलिस की गोली से मारा गया। उसका भाई जावेद कल यानी गुरुवार को बरेली से गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में एक, मतलब रोचक कहना सही शब्द नहीं है, पर बात यह है कि मृतक बच्चों के पिता ने पुलिस से अपील की थी कि दूसरे आरोपी को एनकाउंटर ना करें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों युवकों ने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत दर्दनाक घटना है, और ऐसे अपराध,
जावेद का जो दूसरे जो दूसरा अभियुक्त है, आरोपी है, उसका वीडियो एक सामने आया है, और उसमें ये चीज जानकारी सामने आई है कि जावेद उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था। हालांकि आप अगर सोशल मीडिया और उसके उसमें देखेंगे तो हर तरफ एक कैंपेन चल रहा है कि इसको भी गोली मार दी जानी चाहिए, इसको भी चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, ये वो। कानून के तहत सजा की मांग करनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। अभी तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक जावेद उस समय, जावेद की पूरी लोकेशन कहीं और है।
अच्छा।
लेकिन चूंकि एक पब्लिक सेंटिमेंट और उस समय भावनात्मक रूप से जो चीजें थी उसमें बहकर लोगों ने ये बताया कि जैसे दोनों भाई इन्वॉल्व थे उस हत्या में।
तो पर ये बात थी कि कानून व्यवस्था के लिए विक्टिम के माँ को भी कहना पड़ रहा है कि भाई गोली मत मारना, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों किया उसने ऐसा। एक और दुख देने वाली खबर है, भारतीय ओलंपिक संघ ने सोमवार को भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को संभालने के लिए जो अस्थायी समिति गठित की गई थी उसे रद्द कर दिया। इसके बाद फिर से कुश्ती संघ का पूरा कामकाज ब्रजभूषण सिंह के जो खास और चुने हुए अध्यक्ष थे संजय सिंह के हाथ में चला गया है।
जी।
संजय सिंह की अध्यक्षता में कुश्ती संघ की जो बॉडी चुनी गई थी उसे 21 दिसंबर को रद्द कर दिया था IOC ने, और वो इसलिए था क्योंकि ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप थे पहलवानों के यौन शोषण के। और मैं एक विडंबना करना चाहता हूँ, जैसे राजेश जी ने कहा था, इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में जिन किरदारों पर बनी, जो जिंदा हैं, वो आज सत्याग्रह सड़क पर कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। और आखिरी सुर्खी मेरी ओर से है, स्विट्जरलैंड की दुनिया भर में वायु की गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्था IQ Air ने 2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है तीसरे नंबर का, पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे पर पाकिस्तान, तो हमारा पड़ोस पूरा ही खराब है। और दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय, उसके बाद है गुवाहाटी, और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली अभी भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है।
और कल की जो बहुत बड़ी सुर्खियां थी उसमें एक सुर्खी ये भी थी कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को आदेश दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ INB मिनिस्ट्री को आदेश दिया था कि वो जो ये पेट्रोल पंप पर मोदी जी की तस्वीरें हैं और तमाम जो विज्ञापन चल रहे हैं उनको हटाए। ये भी एक खबर है और ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। हमारे जो आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस तरह से कल एक और घटना हुई। कल कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से बताया कि किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे कांग्रेस पार्टी के सारे जो खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया है। और ये कार्रवाई 30 साल पुराने टैक्स के एक मामले में की गई, 30 साल बाद उसको निकाल कर ठंडे बस्ते से और इस तरह से। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस समय चुनाव के इस मुहाने पर जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है उससे चुनाव लड़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी सुर्खियाँ हैं। और अरविंद केजरीवाल को कल ED ने गिरफ्तार कर लिया, आज सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर रही है। इतनी सारी घटनाओं को देखते हुए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित फाइनल जो आंकड़े थे वो सामने आ गए और सबको पता है अब कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया, कितना दिया, ये सारी चीज़ें कल ही आई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बाकी मामलों में या पतंजलि के मामले में या फिर तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में जो डिसीजन, क्या सिर्फ इसे एक हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कहकर के उसमें समेट देना वाजिब होगा कि इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के मामले को उछालकर और आनंद फानन में रात को उनको गिरफ्तारी कर दी गई ताकि बहुत सारी जो और खबरें जो सरकार के खिलाफ जाती है सरकार को एक बैड लाइट में रखती हैं, सरकार की छवि को बट्टा लगाती हैं, उससे लोगों का ध्यान बट जाए। भाषा, राजेश, शार्दुल और विकास, आप सबकी तो पहली टिप्पणी इस पर।
हेडलाइन मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का हॉलमार्क है, उसमें उनकी काफी महारत हासिल है उनको। हालांकि हर सरकार हेडलाइन को और मीडिया को मैनेज करना चाहती है, चाहे वो किसी भी दौर में रही हो, क्योंकि वो एकमात्र जरिया है आप और हम लोग या हमारे जैसे पत्रकार लोग जो जनता को बताते कि ऐसा हुआ कल 24 घंटे में या अगले पिछले घंटे में एक घंटे में, उसको मैनेज करना सत्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी सरकार इसमें महारत हासिल कर रही है। अब ये कहना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि बाकी जो खबरें थी जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो तमिलनाडु के गवर्नर को लताड़ पिलाई हो सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी और चीजें पर फैसले किया हो, क्या उनको मैनेज करना जो है उस वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। मुझे सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की बजाय ये लार्जर जो उनकी पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नरेंद्र मोदी और उनके जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके। ये बहुत दिनों से, कई महीनों से ये एक खदशा, आशंका लोगों को में थी कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और आज गिरफ्तार हुए। केजरीवाल भी जो है वो कोई बहुत सख्त मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 ईडी के जो नोटिसेज हैं उनको दरकिनार किया, ईडी कोर्ट गई, कोर्ट से उनको जो है उन्होंने कहा मैं आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ वो आखिरी वक्त अपनी गिरफ्तारी को पोस्टपोन करते रहे या टलवाते रहे, उनको ये मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। अब ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नरेंद्र मोदी के लिए या उनकी सरकार के लिए या ईडी के लिए इस वक्त जरूरी थी, इसको इस वजह से समझा जा सकता है, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, अगर वो जो राजनीति का जो फॉर्मेट है उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा घबराती है या पार्टी के जो मैनेजर्स हैं वो सबसे ज्यादा घबराते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो भारतीय राजनीति में अभी उभरते हुए सितारे हैं, 10-12 साल पुरानी पार्टी है उनकी और 12 साल में वो छा गए हैं, हर अखबार में उनका नाम रहता है, हेडलाइन में उनका नाम रहता है। और ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो एक झटके में महात्मा गांधी की तस्वीर को हटा सकते हैं, अंबेडकर को गले लगा सकते हैं, भगत सिंह को गले लगा सकते हैं, भारतीय दिल्ली की विधानसभा के अंदर जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, सरकारी तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ब्रांड की पॉलिटिक्स है उसके घबराने का कारण यही अरविंद केजरीवाल है। उनके लिए राहुल गांधी बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है क्योंकि वो जब वो कहना चाहते हैं आसुरी शक्ति तो वो कहते हैं हिंदू धर्म एक शक्ति है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं। उसका जितना भी इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन किया जाए, गलती तो राहुल गांधी की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक एक कदम जो रखते हैं वो धीरे धीरे इंच इंच करके और किसी की टेरिटरी में वो कुतर नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है, उनका जो हिंदुत्व, राइट विंग जो 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 उनकी उनके समर्थक हैं उनको कुतर रहे हैं। इसलिए उनको एक तो दो चीजें, एक तो उनको भ्रष्ट साबित करना इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक की अभी हम बात कर रहे थे, वो कड़कती सर्दी में सब जीरो टेम्परेचर में अनशन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई वो नहीं है। एक अन्ना हजारे हुआ करते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनको दूसरे गांधी की तरह पेश किया गया,
गांधी बना दिया गया था,
कहां है कुछ नहीं मालूम है। तो ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट की, आप वापस चक्कर घुमा के हेडलाइन मैनेजमेंट में आते हैं, मोदी सरकार ये कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है क्योंकि उसको ये खतरा जरूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल के फेवर में हवा चल पड़ी तो दिल्ली में उनको नुकसान हो सकता है, पंजाब में उनका ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेटेड रिस्क वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी या इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहां से आया है? ये कॉन्फिडेंस वहां से आया है कि हमने इस मुल्क को, मुल्क की ज्यादातर जनता को एक व्यापक हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी है, हिंदू आइडेंटिटी है, उसके नीचे ले आए और देश की जनता को, बहुसंख्यक समाज को ये भरोसा दिला दिया है कि आपका मुख्य मुद्दा यह है कि आपका धर्म बचना चाहिए, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो आपकी संस्कृति बचेगी, वगैरह वगैरह। और इस दायरे के बीच में जितने भी धत्कर्म होते हैं, मैं प्रभाष जोशी का एक शब्द बहुत ही उनका प्यारा शब्द था, वो उधार ले रहा हूँ, जितने धत्कर्म होते हैं, कुकर्म होते हैं, अन्याय होता है,
खटकर्म भी होते हैं,
हाँ, वो उनको किनारे रख देती है जनता और कहती है देखो बाकी तो सब ठीक है, पेट में पत्थर भी बांध लेंगे, बेरोजगारी भी सहन कर लेंगे, अगर 200 पार 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी सहन कर लेंगे, लेकिन लाना तो मोदी को ही। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में हुआ वो स्टेट, भारतीय राष्ट्र और धर्म और भारतीय जनता पार्टी, इनका एक सिंबल बनकर नरेंद्र मोदी उभरे। उन्होंने लोगों के, अधिसंख्य लोगों को, मेजोरिटी को विश्वास दिला दिया है कि मैं जो कर रहा हूं वही भारत को बचाएगा, वही धर्म को बचाएगा। अब ये विश्वास तो दिला दिया है, लेकिन व्हाट्सएप से जो ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचा है RWAs के जरिए, दूसरों के जरिए, वो वोट में क्या तब्दील होगा, एक सवाल ये बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी भी जैसे हम लोग जब चुनाव, ये होता था ना अपना छात्र संघ का चुनाव यूनिवर्सिटी में, आप सभी लोग लड़े होंगे, तो उसमें उधर से दूसरे पक्ष वाला नारा लगाता था, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा, उस नाम होता था, तो हम इधर से नारा लगाते थे जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीत गया, तो जीत गया वाले की हवा बनती थी। तो ये जो तमाम टेलीविजन में सर्वेज हो रहे हैं, इसमें जीत गया भाई जीत गया है, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, अभी इक्वेशंस तय नहीं हुए हैं, अभी टिकट्स का किसको मिला
एक
है,
एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम में आप वो लिया गया है कि भाई हम ऑलरेडी जीत चुके हैं,
हाँ, भौकाल बना दिया गया। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।
भाषा,
देखिए मुझे लगता है कि जिस तरफ मोदी जी और मोदी राज में भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, वो एक बिल्कुल दूसरे ढंग का चुनाव 2024 को स्थापित करना चाहते हैं, और उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी उनके लिए, क्योंकि वह इस समय, जितना भी आप माहौल बना दीजिए कि अयोध्या में 22 जनवरी को क्या हुआ, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के पास इसे लेकर 100% श्योरिटी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर सवारी करके वो 400 पार पहुंच जाएंगे। लिहाजा इस समय वो एक एक सीट के लिए जिस तरह से तैयारी है और विकल्प की जितनी भी आवाजें हो सकती हैं जो उन्हें चुनौती दें, उनको वो निशाने पे लेकर एक दूसरे ढंग का मैसेज देते हैं। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन को जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया, और अभी मैं बात करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी के कविता की गिरफ्तारी, वो बेल के लिए एप्लीकेशन उसको देख रही थी, वहां पर रिफ्यूज हो गया और वापस कहा गया कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। यानी एक तरह से लोकतंत्र मोडिफाइड हो गया है, और उसमें जो भी और चेहरे हो सकते हैं विकल्प के, और खास तौर से उत्तर भारत में, उन्हें किसी न किसी तरह से क्रिमिनलाइज करके अंदर करना, आवाज बंद करना, और यहाँ पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक दूसरे ढंग का प्रयोग कर रहे थे, और आप देखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर के बीच समझौता हुआ सीट शेयरिंग को लेकर, अगर आप बीजेपी के एक्स प्लेटफॉर्म पर जाएं और आप देखें जिस तरह के मीम्स और छोटे वीडियोस बनते हैं, उनमें हर एक में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं जिन पर वो निशाना साधा जा रहा है, उससे पहले नहीं थे वो। तो अब ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करें, और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आधार पे डिस्क्रेडिट करना। आज सुबह 8-9 बजे के करीब मेरी जो RWA के लोग हैं उनसे जब बात हो रही थी, तब लोग कहते कि अरे 100 करोड़ भी खाया तो क्यों खाया, और फिर मैंने कहा कि ये शराब घोटाले में जिस पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसने 65 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया और उसके बाद वो अप्रूवर बना, तो उनका कि ठीक है वो तो करप्शन ठीक है। तो एक ब्रॉड जो एक मिडिल क्लास के लिए एक नोशन बनाया गया है कि बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सबको 24 कैरेट वाला होना चाहिए, ये जो एक इम्प्रेशन है, क्योंकि ये इम्प्रेशन बहुत तकड़ा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं तमाम मैनिपुलेशन के बावजूद खबरें जा रही हैं लोगों तक, तो वहां पर उनके लिए बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे ढंग से एक विलन के तौर पे, कि यही व्यक्ति था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आया और देखिए ये यहाँ पहुंचा है, तो वो एक मुझे लगता है कि विपक्ष के तमाम चेहरे, और मुझे आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं इस बात की आशंका भी जताना चाहती हूँ कि कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि तेजस्वी पे भी इसी तरह की कार्रवाई हो, और जिस तरह से लगातार एक माहौल बन रहा है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर, वोकल चैलेंज के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति का कर रहे हैं, तो एक तरफ तेजस्वी है जो विकल्प दे रहे हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और तमाम उसी प्लान पर खड़े हुए तकरीबन मिडिल क्लास को, और एक दूसरे ढंग की जो आशा जगती है कि भाई हम इन दोनों राजनीति से बहुत थक गए हैं, अब यहाँ पर जाने चाहिए हमें, आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी तैयारी और इसके लिए माहौल जो बनाया गया, आप देखिए अतुल, आप सब लोग तो और ज्यादा देख रहे होंगे हमारे साथ साथ, जिस तरह से पिछले एक साल में तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में तमाम प्रचार में जो भ्रष्टाचार इज इक्वल टू नॉन बीजेपी में तब्दील कर दिया गया है और ये नीचे तक पहुंच गया है, जो अवधारणा बनाने की बात है, परसेप्शन बनाने की बात है, उसमें अजीत पवार जो 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं खबर गायब, चर्चा गायब, सब कुछ गायब हो जाता है। मध्य प्रदेश चुनाव में कवर कर रही थी वहां पर बीजेपी के मंत्री के बेटे का वीडियो आता है, सब कुछ होता है कि इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का किया, वो व्यक्ति बोल भी रहा है विदेश में बैठ के कि मैं डील में शामिल था। लेकिन मुझे इतनी हैरानी हुई कि नीचे वहीं मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, वो एक मुद्दा नहीं बनता। तो एक ये सक्सेसफुल मूव किया है पिछले 10 सालों में कि जो बीजेपी के भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन विपक्ष, अब हेमंत सोरेन कितने बीघा जमीन के लिए जेल में गए हैं अगर आप किसी से पूछिए तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, और आप ये मान के चलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा माहौल बना दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी, और उसके लिए उनको पता है कि सारा इंस्टीट्यूशन एक ही तरह से है।
जब ये भाषा ये कहती है और हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुद्दा बन नहीं पा रहा है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का वो जो भी बात कर रही थी, ग्राउंड पे उसको मुद्दा नहीं बन पाया, तो मैं थोड़ी मोदी की तरफदारी कर दूंगा। ये क्या मोदी की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को बताए, कांग्रेस को बताए कि वो कैसे मुद्दों को उठाए, कैसे मुद्दे बनाए। जितने प्लेटर पे मुद्दे इस वक्त विपक्ष को, कांग्रेस को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कोर्ट दे रही है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स दे रहे हैं, उतने अगर उनमें से आधा भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहते हुए मिल जाते तो वो गांव गांव में, तहसील तहसील में, ब्लॉक और तालुका स्तर पर भगवा पटके पहन करके 20-25 लोगों के जुलूस निकाल करके एक पूरे देश में माहौल खड़ा कर देते। यहां क्या है, एक राहुल गांधी लगता है कि वही आवाज उठा रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष के खिलाफ, और कई बार सेल्फ गोल कर दे रहा है वो आदमी। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जो हैं, वो जो मुद्दे उठाते हैं, वो एक तो मुंह के बल गिर गया, जैसे ओबीसी वाला मामला है, ओबीसी नहीं, अपने क्या कहते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस, उसको लेकर के जो उन्होंने मुद्दा उठाया, तीनों विधानसभा उसमें उनका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब देखिए, उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता आनंद शर्मा राहुल गांधी को डिफाई कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं खड़गे को कि ये क्या कास्ट सेंसस वगैरह, ओबीसी ओबीसी की बात कर रहे हैं आप, ये इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सीधे सीधे अपने टॉप लीडर को आनंद शर्मा डिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये बहुत गलत मुद्दा उठा रहे हैं, इसको नहीं उठाइए। आनंद के साथ शर्मा भी लगा है, इस पर भी गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है क्या? अगर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सफल हैं, तो उसमें सफलता यह है कि वो चाहे भीतर कितनी खींचतान लड़ाई वड़ाई हो रही हो, पूरा उनका चक्का जो रोड रोलर है वो एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। 3 लोग इधर खींच रहे हैं, 5 लोग इधर खींच रहे हैं। क्या इस वक्त सड़क पे उतर करके राहुल गांधी के समर्थन में 20 जगह लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे? जो लद्दाख में जितना प्रदर्शन हो रहा है, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, उसको लेकर के दिल्ली में कितने कांग्रेसियों ने धरना किया? यूथ कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? सेवा दल वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग हैं कहां? प्लस दूसरे मैं सिर्फ कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थोड़ा थोड़ा ये करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे वो सक्रिय होने लगे हैं, CPIM खासतौर पे, CPIM का डेलीगेशन यहाँ हल्द्वानी एवं बलबुलपुरा में आया, ये सब की है, लेकिन सड़क पे उतरने वाले क्या लोग ही नहीं है उनके पास, जो कैडर बेस्ड है, जो जो एनर्जाइज करता है, वो कहाँ है?
इनफैक्ट जो बात आप कह रहे हैं ये बात इस पूरे मामले पर भी लागू होती है कि जब आप कह रहे हैं कि देश एक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, एक व्यक्ति की सत्ता की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा लिया जा रहा है इतिहास में, मतलब भारत के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं है, तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे मौकों पर भी जब एक एक कर दिख रहा है कि सबको अंदर किया जा रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, अब इनका मामला है, के कविता का मामला हो, संजय सिंह, ये लोग इस तरह के लोग नहीं, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, कोई राज्यसभा में है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई एक बहुत बड़ी पार्टी का नेता है, तब भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है कि इसकी कमी दिखती है कि सारे लोग, सारे राजनीतिक दल जो इसके शिकार होते हुए भी सड़कों से ये लोग नदारद हैं, सड़कों पर इनकी पार्टियां नदारद हैं, उस तरह से विरोध प्रदर्शन जैसे कल की घटना के बाद या जो के कविता के साथ हुआ या हेमंत सोरेन के साथ हुआ, तब केवल ट्विटर की बयानबाजी के अलावा विपक्ष में और एकता का कोई बहुत एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सूत्र देखने को नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल की जो बात आपने कही, चूंकि हम लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि अरविंद केजरीवाल जब बनारस गए थे 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने, चूँकि आपने कहा कि भाजपा बहुत डरती है, भाजपा दरअसल आप देखें तो भाजपा के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत ही कड़वाहट तिलमिलाहट नजर आएगी आपको, और वो कड़वाहट तिलमिलाहट इसलिए है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आदमी हमारे प्रचंड सहयोग से खड़ा हुआ और फिर हमारे हाथ से निकल गया और इसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया, एक पार्टी बना ली, दो राज्यों की सत्ता हासिल कर ली, जबकि उम्मीद ये थी कि इस सब का लाभार्थी अंत में भाजपा होगी जो कि इस पूरे आंदोलन को पीछे से संचालित कर रही थी। अरविंद केजरीवाल की जब 14 में पहुंचे वहां पर, और पहला दिन था मुझे आज भी याद है, सुबह सुबह वो अचानक से गंगा पहुंचते हैं गंगा घाट पे और वहां पर गंगा स्नान करते हैं और फिर उसका बहुत बड़ा एक मीडिया वो खड़ा किया जाता है, लाइमलाइट में आता है कि वो गंगा नहा रहे हैं इसके बाद, और दोपहर को बेनियाबाग में उनकी जो पहली जनसभा थी उस जनसभा में अचानक से अपनी बात शुरू करते हैं और वो फिर चुप हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब अजान हो रहा है तो अब अजान खत्म होने के बाद हम अपनी बात करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति में एक किस्म का अवसरवाद भी है, एक बहुत हाल बहुत आला किस्म का, उस बहुत ऊंचे दर्जे का एक अवसरवाद दिखता है कि ये उस समय उनको लगता था कि वहाँ पर, और अगर देखें तो अच्छा खासा वोट जो मिला था बनारस में वो मुस्लिम वोट का ही, मुस्लिम कम्युनिटी का ही वोट था, क्योंकि उस समय 14 में तो चारों तरफ राम मतलब मोदी लहर ही थी, तो मोदी के नाम पर बाकी वोट तो कहीं जा ही नहीं रहा था, खासकर बनारस आसपास के इलाकों में। फिर भी वो जो अवसरवाद है वो फिर बाद में ऐसे इतने तरीकों से सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल के सामने आज एक किस्म का अस्तित्व, आम आदमी पार्टी के नज़रिए से देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी के ऊपर अस्तित्व का संकट है, लेकिन एक बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम खड़ा है। शार्दुल और विकास अपनी बात करें, काफ़ी देर से सुन रहे हैं, फिर हम जो आम आदमी पार्टी का ये जो फ्यूचर वाला प्रॉस्पेक्ट है उस पर थोड़ा सा बात।
लगभग सभी बातें आप सब ने कर दी हैं, मैं तो केवल ये कहूँगा कि अतुल और चर्चा के श्रोता जानते हैं भ्रष्टाचार से मुझे पर्सनली सख्त नफरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन आज ये लेकिन जोड़ने का शब्द है, ये कौन नहीं जानता कि भारतीय राजनीति में सभी भ्रष्टाचारी हैं। कर्नाटक में तो भाजपा इस मुद्दे पर चुनाव भी हारी है ना, येदियुरप्पा जी का किस्सा सभी को पता है, लेकिन एजेंसियाँ चुनाव आते ही विपक्ष के लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं, और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा वाली बात है जो पिछले कई हफ्तों में चर्चा का विषय रही कि भाजपा ने किस तरह से सारा राजनीति के क्षेत्र में जो पैसा चलता है वो सभी पार्टियों के बीच चलता है, सत्ताधारी दल के पास हमेशा से ज़्यादा आता है, लेकिन तब भी उसके बीच भी राजनीति ठीक से चलती रहे, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान और कुछ नहीं, तो वो खत्म हो गया, अब शत्रुता दिख रही है, जैसा अतुल ने कहा सीधा आप घर पे पहुंच गए, घर से उठा लिया और वो इसलिए क्योंकि वो बड़ा नेता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी आंख में खटक रहा है, तो ये जो खटकना है ये चारित्रिक अलोकतांत्रिकता जो है ना वो प्रधान और प्रधानमंत्री के अंदर है वो, हाँ। वो पता चलती है, और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती जैसे बहुत से लोग, और मैं हैरान था जैसे ही अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने का ये प्रकरण कल देर रात शुरू हुआ, तो कितने सारे छोटे छोटे YouTube चैनल और ये सब प्रोपेगेंडा मशीन, वो एक बिल्कुल एक जैसे बटन दबने से चालू हो जाते हैं, सबकी लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई, सबकी लाइव स्ट्रीम तुरंत शुरू हो गई, सब गालियां बकने लगे, सब बताने लगे कि देखो ये कैसा आदमी है, एलिटिस्ट है। जबकि अब तो स्टेट बैंक के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं कि भैया मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, अगर भाजपा के पास पैसा है सारा और किसी के पास तो उसके सापेक्ष कुछ भी नहीं है। मुझे एक, और मैं इसी पे बात खत्म करूंगा, मुझे एक पुराना वो दोहा सा याद आता है कि सोतो को तो शंख जगा सकता है, जो सोने का अभिनय करते हैं उन्हें कौन जगा पाएगा। तो ये वही हिसाब है, अगर आप देखना चाहें तो सच सामने है इस समय।
लेकिन भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक सेंटिमेंट जो है ना वो परकुलेट करके नीचे तक चला गया है कि बीजेपी जो कर रही है वो तो ठीक कर रही है, बाकी लोग उसको 24 कैरेट खरे चाहिए।
वो
ये बड़ा
वो इसलिए है क्योंकि व्यक्ति पूजा में आजकल लोग लगे हुए हैं, पर जैसे ही ये मृग तृष्णा या शीशा, इसे आप जो भी कहें, जो भी उसकी
समाप्त होगी,
एडजेक्टिव आप उसे देना चाहें, कुछ भी उसे नाम दें, वो जिस दिन टूटेगा सब धरातल पर है। और जैसे जैसे लोगों के रोजगार जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे भ्रम टूट रहे हैं।
मैं विकास अपनी बात शुरू करें, एक आंकड़ा रख दूं लोगों के सामने कि 2014 से अब तक ईडी के जो तमाम कार्रवाइयां हुई हैं उनमें 95% कार्रवाइयां गिरफ्तारियां विपक्ष के नेताओं के ऊपर हुई हैं। कुल 121 लीडर्स के खिलाफ अब तक ईडी ने कार्रवाई की है, उनमें से 115, ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है। और ये बताता है कि जो आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा है वो किस तरह से सोचता है, कितना डेमोक्रेटिक है वो, कितना लोकतांत्रिक सोच का आदमी है। 115 विपक्ष के नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाइयां की हैं। ये विशुद्ध रूप से सरकारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको हथियार बनाने का, उनको वेपनाइज करने का मामला है। विकास जी।
विकास आप अपनी बात रखिए।
खाली आपके में एक चीज जोड़ देती हूँ, बड़ा मजेदार, मतलब लाइटर मोड पे, कि बाकी जिन पर हुई थी वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए वॉशिंग मशीन में धुलकर।
बिल्कुल
जी। आप
नहीं, नहीं मैं कह रहा था विकास अपनी बात रखे, फिर मैं अंत में एक छोटी सी बात और कहूंगा।
तो सर केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है, मतलब मैं वहीं से शुरू करना चाहूँ जहाँ राजेश जी ने एक इशारा किया था कि बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है बीजेपी की ओर से, और मैं कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि ये एक तीर से कई शिकार वाला मामला किया है बीजेपी ने, और उसकी वजह यह, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हेडलाइन मैनेजमेंट जिस पर हमने ठीक ठाक चर्चा की, दूसरा राजनीतिक और सीट मैनेजमेंट भी जो है इसके पीछे नज़र आ रही है। अब देखिए कि केजरीवाल की सरकार कहाँ है, पंजाब में अभी फुल फ्लैज तरीके से, वहाँ पिछली बार भी बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, तो वहाँ इस बार किसान आंदोलन के चलते और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है नहीं। दूसरा दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में 7-7 इनके पास हैं, और हरियाणा में भी केजरीवाल जैसे, मतलब मुझे लगता है कि उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया उनको कि एक अलग से नैरेटिव खड़ा किया जाए कि एक आदमी है जो टक्कर देने की कोशिश कर रहा था और उसी को आपने जो है अंदर डाल दिया, तो वोटर कंफ्यूज हो सकता है। तो जैसे ही कंफ्यूज होगा तो वो गठबंधन एक तरफ रह जाएगा, और वोट में जिसके में सेंध लगेगी वो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के वोट में सेंध लगेगी जो डायरेक्ट डायरेक्ट फाइट में है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी दी जा रही है इनकी गिरफ्तारी के पीछे। तो दूसरा संगठन तोड़ना भी एक मकसद हो सकता है कि संगठन जो है वो एक ही संगठन है जो सामने ठीक से चुनौती दे रहा है, और उसको अगर झटका लगेगा लोग कंफ्यूज होंगे, लोग कंफ्यूज होंगे, तो एक इसमें वो पॉइंट है जो कई शिकार की बात मैं कर रहा हूँ। और स्टेट बैंक का आंकड़ा जैसे जहाँ हमने बात की ही थी, तो कल एक स्टेट बैंक के आंकड़े में एक और खास जानकारी आई कि वो स्टेट बैंक को भी नहीं पता है कि 466 करोड़ रुपया किसने दे दिया। स्टेट बैंक ने जो कल डेटा जारी किया है तो एक उसमें आंकड़ा यह है कि 466 करोड़ रुपए की हमारे पास किसी परचेजर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 466 करोड़ कोई आदमी आया बैंक,
मतलब
को, बैंक को देकर चला गया,
उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा लेकिन वो रिडीम नहीं हुए, नहीं है। वो रिडीम नहीं हुए,
नहीं नहीं उनके केवाईसी नहीं हुए।
ठीक बात है। अब हाँ शार्दुल
आप हो गया, केवाईसी नहीं,
केवाईसी
नहीं, अच्छा केवाईसी
नहीं, मैं मतलब बैंक को नहीं पता किसने खरीद के दिए हैं।
देखिए सारी बात हो गई है, पर मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे आज ये बात होनी बड़ी ज़रूरी है भ्रष्टाचार की, क्योंकि हम बात करते रहते हैं और सरकार उसका बार बार इस्तेमाल करती है, और एक हद तक वो बात टेक्निकली ठीक भी है, भ्रष्टाचारी जैसा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी ये समय है खासतौर से जनता के लिए समझने का कि इसको थोड़ा सा इस नाजुक फर्क को समझें। भ्रष्टाचार भी कई तरह का होता है, जैसे राष्ट्रीय चरित्र कई तरह का हो सकता है, व्यक्ति का चरित्र कई तरह का हो सकता है उसकी व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में। भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार अगर कोई नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा, वो खुद पैसे नहीं ले रहा, उसका खुद का खाता साफ है, उसका खुद का जीवन साफ है, लेकिन अगर वो एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और इस अंतर को अब हमारे लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर पैसा आने का कोई साधन नहीं है तो जैसे भी पैसा चलता है राजनीति उसी से होगी, राजनीति कभी रुकेगी नहीं। हमारी सरकार अपने लिए तो सब छुपा के पैसा ले रही है, औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ रही। आप जैसे ADR के हमारे चोकर जी आए थे, वो कह रहे थे आप स्टेट इलेक्शन करवा दीजिए तो सब साफ हो जाएंगे, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। तो भ्रष्टाचार ये हाथ घुमा के सर के पीछे से नाक पकड़ने वाला हो रहा है, इसको समझना जरूरी है।
यहाँ पर दो और चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर सब हम सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। एक तो ये कि इंडिया अलायंस के लिहाज से भी इस कार्रवाई का एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, बड़ा मैसेज है कि अकेले ममता बनर्जी ने अपने को अलग ही एक तरह से कर लिया था, वो एकला चलो की राह पर चली गई थी। तो इंडिया अलायंस जिस तरह से एक अलायंस के रूप में BJP को चुनौती देना चाहिए था, वैसी सकल अख्तियार नहीं कर पाया, वो एकाग्रता एकजुटता नज़र नहीं आई। खासकर अरविंद केजरीवाल के मामले में ये बात कही जा सकती है, आप और कांग्रेस ने एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी और सीटों का भी उनका बंटवारा ठीक ठाक दिल्ली में हो गया था। तो इस मामले में देखा जाए तो एक तो एक मकसद ये भी है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पूरे जो फंक्शनिंग है उसको डिरेल करने का एक बड़ा मकसद हो सकता है, एक चीज़। दूसरा, इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के सामने जो एक बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है वो संकट है लीडरशिप के वैक्यूम का, क्योंकि कल हम सुन रहे थे आतिशी और तमाम और नेता कह रहे थे कि वो जेल के अंदर से काम करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे जहां पे भी रहेंगे जेल में। लेकिन ये इसके राह में बड़ी अड़चने हैं और ये एक तरह कोई बहुत स्मूथ प्रक्रिया नहीं है और ये फिजिबल नहीं है, ये व्यावहारिक नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर से काम करे, क्योंकि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ जो कामकाज होते हैं एक मुख्यमंत्री की, जो जिम्मेदारियां निर्वहन करनी होती हैं, उसमें जेल के अंदर से काम करने में कई तरह के लेयर्स और हर्डल्स जुड़ जाते हैं। मसलन कि कुछ चीज़ें बहुत टॉप सीक्रेट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पॉलिसी के लेवल पर जो कि इस तरह से डिस्कस नहीं होती हैं कि किसी के सामने आए, और जब आप जेल के अंदर से कोई चीज़ इस तरह के करेंगे तो उसमें 3-4 लेयर, एक जेल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है उसमें, उसको सारी चीज़ों की, कोई चीज़ अंदर जा रही है, कोई चीज़ बाहर आ रही है, कोई पेपर जा रहा है, किसी पर साइन हो रहा है पॉलिसी लेवल की, तो उसमें जो लीक होने की चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी बनने से पहले उसकी जो गोपनीयता है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें क्विड प्रो को भी इन्वॉल्व होता है, हितों का भी टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है, तो ये संभव नहीं है इस बड़े उसमें। तो जो लीडरशिप का वैक्यूम है पैदा हो गया है अचानक से, वो आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मैं शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अपॉर्चुनिज्म वाला अपॉर्चुनिस्ट का भी रवैया अख्तियार किया अरविंद केजरीवाल ने अतीत में, और आप देखिए कि जितने बड़े बड़े नाम एक समय पर जुड़े थे इस आंदोलन के जरिए इस पार्टी से, उसमें बड़े लोगों को बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही कड़वाहट भरे माहौल में बाहर करना किया गया, बाहर हुए लोग, चाहे उसमें प्रशांत भूषण जैसे लोग हों, योगेंद्र यादव जैसे लोग हों, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग हों, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के और तमाम लोग, अगर आप 2014 का इलेक्शन याद करें तो बहुत बड़े बड़े नाम इनकी तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो लोग आज कहीं नहीं हैं, क्योंकि एक किस्म का एक व्यक्तिवाद जो है या एक व्यक्ति की जो महत्ता है पूरे उसमें, जो आप भाजपा में देख सकते हैं, किसी और पार्टी में देखते हैं, उस चीज़ को अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी में एस्टेब्लिश किया है, और उसको देखते हुए एक बड़ा संकट है यहाँ से कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे नेता कुछ भी कहें कि ये जेल से चला लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आने वाला समय अगर इनको जमानत नहीं मिलती है और ये अंदर रहते हैं जेल में, तो इसको आगे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम होगा। राजेश,
देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े जितने मुद्दे आपने उठाए हैं उसमें एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें इंडिया अलायंस वाली पे बात भी आऊंगा
जी।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दो जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये कि सेकंड रंग लीडरशिप का क्या होगा और क्या वो सरकार अंदर जेल से चला पाएंगे। तो उसमें टेक्निकल मसला ये है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी इमारत को जेल में बदल सकती है, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका 36 का आंकड़ा है अरविंद केजरीवाल से, वो मान जाए तो वो किसी गेस्ट हाउस को जो है जेल में बदल सकते हैं, वहां से अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा होगा ही क्यों। जेल में जो जेल मैनुअल है उसमें वो ये कहता है कि हफ्ते में कोई भी कैदी या अंडर ट्रायल वो 2 दिन अपने परिवार वालों से, एसोसिएट से मुलाकात कर सकता है। तो एसोसिएट्स में उनके अफसरान ये सब भी आ सकते हैं, तो 2 दिन तो वो मीटिंग कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है टेक्निकली। लेकिन बाकी जो मसले हैं कि वो क्या सरकार चला पाएंगे, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इतने चालाक पॉलिटिशियन हैं कि वो इसका इंतजाम करके गए होंगे कि 2 दिन तो सरकार मैं चलाऊंगा अंदर से, उसमें ऊपर ऊपर जो भी साइन करने होंगे वो कर सकता हूं, लेकिन बाकी जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी और बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो बाकी सब काम करें, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, आपने जो कही कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से आम आदमी पार्टी को एक चालाकी से और एक बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से चलाया, और उसमें जो वेल मीनिंग लोग थे, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अरविंद कुमार, आनंद कुमार और योगेंद्र यादव, इन सबको जिस तरह से इनकी बेहुर्मती करके निकाला गया वो ठीक नहीं था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति चैरिटी नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल में एक कनिंगनेस है जो राजनीति के लिए एक बारीक कनिंगनेस और चालाकी और मक्कारी की जरूरत होती है। वो गांधी में भी थी, नेहरू में भी थी, इंदिरा गांधी में भी थी, सत्ता चलाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य में भी रही होगी। वो कनिंगनेस और वो थोड़ी चालाकी बारीक जो है वो अरविंद केजरीवाल में है। जिस तरह से प्रोफेसर अरविंद कुमार, आनंद कुमार और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव चलाना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी को, उसमें वो, क्योंकि ये लोग सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काले को काले सफेद को सफेद कहेंगे। अरविंद केजरीवाल अगर उस तरह से चलाते तो आम आदमी पार्टी आज जहां है वहां नहीं रहती। मैं यहां पर एक बड़ा बहुत ही क्या कहते हैं इसको, आउटलैंडिश टाइप का एक ख्याल है ये, इसमें कोई यथार्थ नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन राजनीति जो जिस तरह की अरविंद केजरीवाल खेलते हैं उसको देखते हुए इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फर्ज कीजिए अगर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर रुक गई 2024 में, और किसी मिरेकल से, कल्पना से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास 25 सीटें आ गई, तो गारंटी है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेगी। ऐसा किया है लोगों ने, इस मुल्क में ऐसा हुआ है।
जी जी,
ममता बनर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाने वाली है। 93 में उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था ये कि हम टैसिट अंडरस्टैंडिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पंचायत चुनाव में हम लड़ेंगे। तो पहला जब वो कोई कदम नहीं रखता था वहां पे भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का कोई भी सैनिक या सिपाही, या नहीं रखने देती थी उनको वाम मोर्चा, ममता बनर्जी उनको वहां लेके आई। इसलिए जिस तरह की राजनीति, ये अंबेडकर के साथ भी हो सकते हैं, सावरकर के साथ भी हो सकता है, हालांकि सावरकर के खिलाफ बहुत बात की है इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने,
उसको थोड़ा सा हटाना उस ठप्पे को मुश्किल होगा। भाषा
जी, देखिए मेरा मानना है कि ये सारे इंतजाम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बेहतर और आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता था कि ये गिरफ्तारी होनी ही होनी है।
हाँ।
तकरीबन ये खाली तारीख का मसला था, और हम सब जो लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे इस बात का कयास था, तो उसकी तैयारी उनके दिमाग में रही होगी और वो तैयारी करके गए हैं। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब हम विपक्षी पार्टियों के बारे में सोचते हैं, बहुत सी हमारे जो ख्याल रहते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, तो ये लगता है कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया, समाजवादी पार्टी बसपा से कैसे मिल गई, बसपा समाजवादी पार्टी से कैसे मिल गई। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी परवरिश लखनऊ में है और मैंने दोनों के बीच भयानक संघर्ष देखा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। या मान लीजिए बिहार में नीतीश और लालू कैसे मिल जाएंगे, कैसे अलग हो जाएंगे, कैसे पलटू राम फिर पलट जाएंगे। तो राजनीति जिस तरह से संभावनाओं को समेटे रहती है अपने आप में, उसमें हमें जो 24 कैरेट वाला मामला है वो नहीं, अपना हम उस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और इस मामले में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा खतरा मोदी जी के लिए इसलिए भी थे, अभी भी हैं, या आम आदमी पार्टी इसलिए है क्योंकि वो उतनी ही फ्लेक्सिबल है जितने की वो खुद हैं। अब आप मिसाल के तौर पे देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम लोगों के साथ गठबंधन कर रखे हैं, उन तमाम लोगों को अपने में समेट लिया है, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमाम अलग अलग राज्य, एक राज्य उठाइए, हर जगह बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। जिस नीतीश को वो लोग पानी पी पी कर कोसते रहते थे, उसी नीतीश को दोबारा गले मिला लिया जहां पे गृह मंत्री मन से बोल रहे थे कि उसकी एंट्री कभी नहीं हो सकती है। तो उस मामले में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी पूरी की पूरी जो राजनीतिक सफर की शुरुआत एंटी कांग्रेस हुई दिल्ली में, और वह जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 2024 में एक दूसरे ढंग की मैच्योरिटी के साथ उन्हें लगा कि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है, यहाँ वो ममता बनर्जी से ज्यादा मैच्योर रुख अख्तियार करते हैं और कांग्रेस के साथ अलायंस में जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो सरकार चलाना और जिस तरह से उन्होंने एक्सपैंड किया है, उससे हम और आप सहमत हो असहमत हो, बहुत सी गुंजाइशें हैं। मैंने गुजरात में भी जाके देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को। सारा का सारा जो ट्राइबल बेल्ट जो मैंने चुनाव के दौरान कवर किया था, वहां साफ दिखाई दे रहा था कि ये वोट कहाँ जा रहे हैं, वोट किसको काट रहे हैं। लेकिन ये जो एक पोटेंशियल है भारतीय राजनीति में कि आप कैसे साथ आ सकते हैं, कैसे आप अलायंस में जा सकते हैं, इसकी एक दूसरे ढंग की लकीर अरविंद केजरीवाल ने खींची है और शायद इसीलिए वो इस तरह से निशाने पर है। लेकिन जो सबसे कारगर बात है जिसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगी कि साम दाम दंड भेद लगाकर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त उस तरह से नहीं कर पाई जिस तरह से उसने देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या तो सीधे या तो पीछे से उनकी खरीद फरोख्त की, उनको अपने पास मिलाया। और मुझे लगता है कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग बेस अभी तक आम आदमी पार्टी का है खास तौर से दिल्ली में, वो एक दूसरे ढंग का मैसेज भी देता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें इतना बड़ा लालच, कितना बड़ा लालच होगा इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। खाली कर्नाटक में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई इसका ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कुछ प्रमाण है। तो मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी पार्टी के पास अभी तक एक मजबूत लकीर है कि वो अपने लोगों को बिना चार्टर्ड प्लेन में, बिना कैद किए, बिना कहीं ले जाए सुरक्षित रख पाती है। वे बिकने को तैयार नहीं होते। अब ये कितने दिन तक हो पाएगा अगर ये ऐसा रहे,
ये
तो अभी भी उसके पास फाइट का एक अच्छा पोटेंशियल है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी के पास जितनी बड़ी मेजॉरिटी है, जो नंबर इतना बड़ा है कि उसमें तोड़ पाना और तोड़ फोड़ का खेल, मेरे ख्याल से मुझे याद है एक बार इसकी कोशिश हुई थी जब पहला टर्म था उनका, और लेकिन उसमें कामयाब नहीं, क्योंकि वो नंबर इतना ज़्यादा है कि 70 में 67 उनके पास थी, सिर्फ 3 थी, तो आप बहुत ज़्यादा खरीद फरोख करके भी वहाँ तक पहुँचने की स्थिति नहीं होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल वो जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति का एक चरित्र बन गया, उससे अभी उनकी पार्टी बची हुई है, और इस तरह की इस किस्म की लॉयल्टी आज की राजनीति में बड़ा मुश्किल है। विकास
जी, गठबंधन के नज़रिए से अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक तीर से कई शिकार वाला मामला है और संगठन तोड़ना इसका एक मकसद हो सकता है। तो हम याद करें कि थोड़ा सा समय पहले एक प्रयोग हुआ था राहुल गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का, मगर शायद भाजपा को समझ में आया कि ये दांव बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ सकता है, और यात्रा का भी दौर था और सब चीज़ें थी। मगर ये जैसा कि राजीव जी ने भी कहा था, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है और इसमें बहुत सारे मकसद भाजपा ने हल करने के लिए लिए हैं। हालांकि अब जो गठबंधन को तोड़ने की दिशा में एक चीज़ें जो अभी थ्योरी फैलाई जा रही है, अभी आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, तो ट्विटर पे अब इस मामले में चर्चा नहीं हो रही कि वो भ्रष्टाचारी, जैसा जिस तरीके से कल ही घोषित हो गए थे कि भ्रष्टाचारी या घोटालेबाज केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, आज इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत पर हुई है। कांग्रेस ने अपने दौर में शिकायत दी कि शराब नीति में किस तरीके से सारे नियमों का उल्लंघन हुआ और उसके आधार पर कार्रवाई हुई, इसमें बीजेपी का तो कोई योगदान नहीं है। आज इसको पूरे तरीके से पेडल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे सब जगह।
अभी ये एक वही हेडलाइन मैनेजमेंट फिर से
जी।
शार्दुल, आपकी आखिरी बात और उसके बाद फिर हम आज चर्चा को समेटेंगे।
देखिए दो बातें, एक तो जो आपने बात कही थी जेल से मुख्यमंत्री के काम करने के बारे में, तो सारी बातें आप सबने कह दी, मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो हम राजनीति के अपराधीकरण पे बात करते रहते हैं, ये एक अच्छी मिसाल नहीं होगी कि एक मुख्यमंत्री जेल से करेगा। वो भले ही आज की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन
आपको याद हो लालू यादव को भी जब सजा हुई तो अल्टीमेटली उन्होंने राबड़ी देवी को बिठाया और उसके बाद गए वो, या हेमंत सोरेन का
इस्तीफा देखे,
तो वो प्रेसिडेंट अच्छा नहीं होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, मेरा ये मानना है और जितने लोगों से मिलता हूँ, हम सभी मिलते हैं पर हमारी समझ अलग अलग हो सकती है, तो जैसे आपने अपॉर्चुनिस्ट कहा और उन्होंने चालाक कहा, उसे राजनीतिक चपलता, और जो उनके चाहने वाले हैं उसे राजनीतिक चपलता या
समझदारी कहेंगे,
सूझबूझ कह देंगे, तो राजनीति में ये सब काम करने पड़ते हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन भाजपा जो ये कर रही है, मैं उसी पे फिर
राहुल गांधी इसीलिए थोड़ा मिसफिट नजर आते हैं इस पूरी राजनीति में।
राहुल गांधी पर फिर कभी बात करेंगे, पर भाजपा जो ये कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे बहुत जरूरत से ज्यादा कुछ व्यूह रचना है। होता क्या है, जब सत्ता बिना रोक टोक के जब रहती है ना,
सत्ता का अहंकार भी बहुत सारी चीजों करवाता है। अहंकार तो है ही,
होता क्या है, जब सत्ता का इतना सब ये महिमा मंडन हो जाता है तो लोगों को लगता है यही सबसे बड़े ज्ञानी, वो इतने होते नहीं है। आप बार बार जब विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जब भी हम देखते हैं ना, जब इन घटनाक्रमों को बाद में देखा जाता है तो पता चलता है लोग इतने चतुर नहीं थे, बस वो सत्ता के अहंकार में थे, लोग जी हुजूरी करे जा रहे थे। ये अहंकार ज्यादा है, ये आंख में खटकना ज्यादा, क्योंकि केजरीवाल का राजनीतिक अस्तित्व बाकी जितने इंडिया अलायंस में लोग हैं उनके मुकाबले, सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व उतना नहीं है, लेकिन वो खटकता है क्योंकि वो दिल्ली में है, वो नाक के नीचे आपके ना।
नहीं भाई, आप कैसे कह सकते हैं, अकेली पार्टी है जिसके पास दो मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो एक एक स्टेट की पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी से लेके ममता बनर्जी से लेके सब एक एक स्टेट के, उनके पास दो दो मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं है, आज की तारीख में राजनीतिक रूप से उनकी अपनी एक हैसियत है,
बिल्कुल है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस लेवल के उनके खिलाफ भाजपा के मन में आपको दिखता है सादे वो आंख में खटकने वाली बात, वो औरों के लिए नहीं दिखता
ना।
वो इसीलिए है क्योंकि वो खटकते हैं उनकी आंख में, उसके कारण अपने हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल चीज को कभी रैशनल रीजन से समझाया नहीं जा सकता, तो ये वही बात है। बाकी सारी बात आपने कर ही दी, पर ये हमारी राजनीति का शरण है। मुझे बड़ा व्यक्तिगत रूप पे अच्छा नहीं लगता कि पहले प्रतिद्वंदी होते थे, अब ये शत्रुता हो गई है
जी, जी।
जो अच्छी चीज नहीं है।
ठीक बात, तो हम काफी विस्तार से हमने इस पर बातचीत कर ली है। मेरे ख्याल से अगर कुछ एकाध पॉइंट आप लोगों के मन में इस बातचीत के दौरान आए हो राजेश और भाषा, तो आप लोग जोड़ लें, फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
भाषा आप शुरू कीजिए।
मैं खाली एक अपडेट दे देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी अपील जो है विथड्रॉ कर ली है अरविंद केजरीवाल।
अच्छा, तो उनको अब वो जमानत नहीं चाहिए,
जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे शायद अब।
अच्छा,
तो सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर ली है उन्होंने अपनी प्ली।
ओके।
दूसरी हेडलाइन एक और मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि उनको शायद और कुछ केसेस में भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ खबरें छपी हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स पर जासूसी करनी शुरू कर दी थी सोर्सेस के जरिए। ये खबर भी अभी अभी फ्लोट अरविंद केजरीवाल अगर अंदर रहते हैं तो अगले दो महीनों तक भी अंदर रहते हैं तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे, ना हरियाणा में, ना पंजाब में, ना गुजरात
पूरे देश में।
तो एक बहुत बड़ा चेहरा जो इस इलेक्शन इलेक्टोरल राजनीति का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा जो है वो अंदर रहेगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर विपक्ष इसको एक अपॉर्चुनिटी जो क्या कहते हैं उसको, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने वाला होगा, जैसा मोदी करता है,
आपदा में को अवसर में बदल,
आपदा में बस बस आपदा में अगर अवसर में इसको बना देगा वो जो बड़ा मजेदार है, तो अगर वो बना सकता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली के इतने बड़े नेता को मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे, कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका उसी तरह से क्वेल करने की भी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी के पास, और जो सरकार के पास इस समय जो फोर्स है, जो पावर है, और जो उनकी उनकी जो विल पावर है एक तरह
जी
से
जी।
विरोधियों को दबाने की और उनको किनारे करने की, उसका असर यह होगा कि उनको वो भी किया जाएगा। बहरहाल
ठीक बात है। तो
मुझे भी यही लगता है कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे अभी बाकी लोग भी कह रहे थे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तारी हुई, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल बायस है।
नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है।
चेहरे उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें
तो चेहरे नहीं
चाहिए, उन्हें आवाज नहीं चाहिए, उन्हें मीडिया में भी वो चेहरे नहीं चाहिए जिसकी कोशिश उन्होंने PIB फैक्ट चेक के तहत की थी। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो रिजीम है ये ऑटोक्रेटिक रिजीम है, ये हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा, अपनी बात, अपना प्रचार और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नहीं। और अरविंद केजरीवाल का जो एक क्लाइंटेज था और खासतौर से कांग्रेस के साथ जो मिलकर हो रहा था उसमें एक कटौती हो। अब देखना यह है कि जैसे राजेश कह रहे हैं कि आपदा में अवसर कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जनता जनार्दन के पास जाने के अलावा मीडिया जिस तरह से खबरें चला रहा है, आज की हेडलाइंस आप उठा के देख लीजिए, हिंदी के जो अखबार है, आम आदमी पार्टी का खास गया अंदर, ऐसे हेडिंग्स लगी हुई
इस बात में जो आप कह रही हैं,
एक तरह से कंटिन्यूअसली 24 घंटे दूसरे ढंग का,
आपकी जो बात है इसमें बिल्कुल ठीक बात है, इस भाषा इसमें
उसका काउंटर
नहीं, नहीं आपकी बात से इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतने बड़े फैसले बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते, ये तो सुविचारित होंगे ही। एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का कोई निर्णय जो होगा वो बहुत सुविचारित ही होगा। और उसमें किस तरह का एक एक जो मैंने कहा ना कि एक किस्म का घृणा या उस तरह की चीज़ देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो जो दो सबसे मुखर चेहरे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेके उनके ऊपर अटैक किया, अरविंद केजरीवाल ने एक शेल्टर लेके किया विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर, जिस तरह से उनको अनपढ़ जाहिल और इस तरह के जो बहुत फ्रंटल स्ट्रेट अटैक ऐसा बहुत कम ले, और दूसरे राहुल गांधी हैं जिन्होंने स्ट्रेट अटैक किया है। तो जिस तरह की छवि है, जिस तरह का व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, आपको अगर याद हो जिस तरह से पी चिदम्बरम को उनके घर की बाउंड्री फाँद कर CBI के लोग घुसे और उठा कर लेके गए, तो जो विंडिक्टिवनेस है, एक बदले की भावना जो है, ये सारी चीज़ें जो काम करती है उसका भी एक बड़ा, और यहाँ पर मानवीय कमजोरी सामने आती है कि वो मानवीय स्वभाव है कुछ लोगों के अंदर, अगर वो है तो वो है। और प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का मुजाहिरा कई बार किया, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी उन्होंने इस चीज़ का, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये मेरी अपनी राय है कि जिस तल्ख तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां की गई, उनको अनपढ़ और इस तरह का बताया गया था, उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। आखिरी कुछ आप कहना चाह रहे थे विकास?
बस मेरा सर एक सवाल है दिमाग में आया जो अभी, कि अभी हम जब ये सारी चर्चा कर रहे हैं और ये सारी जब कार्रवाई हुई है तो पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो ऑफिशियली हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, आचार संहिता में हैं, तो इस बीच क्या किसी भी मतलब संस्थान को इस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की इजाजत होती है या नहीं, या चुनाव आयोग का इसमें कुछ भूमिका होती है, नहीं उनको सूचित करना होता है, नहीं होता है, तो इस तरीके अगर कोई बता पाए या
राजेश जी कुछ? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं हो सकती मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान,
नहीं हुई है तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मुझे लगता है कि सरकारें कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई जाती ना कर दे किसी पे इसलिए लिया जाता है ताकि चुनाव जो है वो सही ढंग से चलता रहे और उसमें वो जो पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो चुनाव आयोग के पास आ जाता है, इसीलिए चुनाव आयोग ने कई जगह पुलिस के अफसर को बदला है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या किसी को अगर ऑनगोइंग मसला है उसको गिरफ्तार कर सकता है नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि इस पे कोई रोक टोक नहीं है ऐसा मुझे, लेकिन मुझे
ये बड़ी दिलचस्प चीज है जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसको प्रोवाइड
तमिलनाडु में भी जब चुनाव चल रहा था तब उस समय भी स्टालिन के जो मंत्री थे उनकी गिरफ्तारी, उनके घर रेड जिस समय, क्योंकि वो तो उस समय मैंने देखा था और उस समय जिन लोगों से बात की थी उन्होंने कहा था कि जो ऑनगोइंग केसेस हैं उनमें इनके पास ये पावर रहती है ईडी और CBI, इनकम टैक्स के पास भी रहती है, इसलिए आप देखिए कि ये तीनों इस समय बहुत सक्रिय हमेशा हो जाती है। आपको याद होगा बिहार के समय भी इसी तरह की सक्रियता थी।
ये एक विकास ने बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मौजू एक मुद्दे की तरफ ध्यान, किसी दिन कोई लीगल एक्सपर्ट होंगे इस मामले के विशेषज्ञ तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है और मकसद ही यही है उसको पता अथॉरिटी में रहने का कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारे प्लेयर्स जो हैं डेमोक्रेसी के हमारे लोकतंत्र के उनको एक बराबरी की ज़मीन मिल सके और वहाँ पर वो एक बराबरी के साथ कॉम्पीट कर सकें, किसी को कोई किसी तरह की बढ़त ना हो। अब अगर उसमें ED जैसी संस्थाएं या कोई और केंद्रीय एजेंसी किसी प्रछन्न तरीके से किसी को कट करने की, किसी को हाथ बांधने की, किसी को जेल में डालने की या किसी को नियंत्रित करने का काम कर रही है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ निश्चित रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो रहा है।
इसमें एक मसला है अतुल, ये देखिए ये क्राइम का मामला है
जी,
ये जो भ्रष्टाचार है ये रिश्वतखोरी और क्राइम का मामला। अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिशियन मर्डर कर देता है
जी,
तो उसके खिलाफ क्या 302 के तहत कार्रवाई नहीं होगी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा? तो ये सवाल इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए।
ठीक बात,
मैं ये कह रहा था ये पिछली बार भी हुआ था, आपको याद हो तो उस समय मेरे दिमाग से इस समय नाम उतर गए हैं, पर इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था कि ईडी को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो ईडी की तरफ से आता नहीं हम निष्पक्षी कार्रवाई करते जैसा राजेश ने बोला, और बाद में मुझे याद है जो उस समय वो जो ईडी चीफ थे जिन्होंने जवाब भेजा था फिर वो चुनाव आयोग का मतलब चुनाव सचिव बन गए थे, नहीं अशोक लवासा नहीं,
वो तो दूसरा मामला था,
तो बन गए थे, तो ये जवाब आया था कि नहीं हमारी मतलब
अमूमन उसका वही था कि हमारी तो कार्रवाई निष्पक्ष ही होती है।
चलिए कोशिश करेंगे कि हम इस विषय को थोड़ा और विस्तार से एक बार समझे किसी लीगल एक्सपर्ट के जरिए। आज का समय हमारा करीब करीब पूरा हो रहा है, रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे लेटर? सबसे पहले एक
एक ही है छोटा सा,
एक लेटर भी है, तो शार्दुल क्यों ना आप इसको पढ़ दें आज जो हमारे सब्सक्राइबर का एक पत्र है।
तो विशाल का पत्र आया है और वो कह रहे हैं, आज के दौर में कई महिलाएं नौकरी व्यवसाय करके अच्छा खासा कमा रही हैं, तब राजनीतिक फायदे के लिए सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देना ठीक नहीं, जनता की तिजोरी को इस तरह लुटाना गलत है। दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र में तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध निर्भय बनो आंदोलन चल रहा है, उसको लीड कर रहे असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी, निखिल वागले पर चर्चा में जरूर बुलाएं। सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसी आवाजें उठती देखकर पहली बार मराठी होने पर अभिमान लगता है। आपके पत्र के लिए धन्यवाद विशाल।
तो विशाल कोशिश करेंगे ये जो जिन नामों का सुझाव आपने दिया उनको चर्चा में हम किसी समय बुलाएं और उनको जोड़ें। मैं आशीष और अनिल हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं जो इस चर्चा को प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी ध्यान लूँगा कि ये जो जिन नामों का सुझाव उन्होंने दिया उनको चर्चा में ज़रूर कंसीडर करें, उनको बुलाएं और नया कुछ नई जानकारियाँ हर व्यक्ति अपने साथ जोड़ता है, लाता है, चर्चा को समृद्ध बनाता है, तो वो ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी जो 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात है, तो इसमें अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं लोगों के। मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली जो वेलफेयर स्टेट है, आप इसको फ्री, मतलब पिछले कुछ समय के दौरान फ्री बीज और ये सारी चीज़ें कह के और उसको एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ाने की, उसको अब्यूज़ करने की बड़ी प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज़ें वेलफेयर स्टेट में, खासकर भारत जैसे समाज में जहाँ पर ऊंच नीच का दायरा, मतलब अगर आप देखें सामाजिक जो गैप है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास डे टू डे सर्वाइव करने का संकट है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं वो ज़रूरी हैं और काफ़ी लोगों के लिए संबल भी बनती हैं, बहुत ज़रूरी और उनका बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। तो सिर्फ उसे फ्रीबी या उस तरह की चीज़ें कह के खारिज करना ठीक नहीं है। बहुत क्विक छोटी छोटी टिप्पणी, राजेश आप लोगों को क्या लगता है ये जो 1000 रुपये नगद देने की स्कीम पर आप क्या सोचते हैं?
देखिए ये तो जो अर्थशास्त्री हैं, हमने बचपन में 10वीं 11वीं में पढ़ा था, ये डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है ये अर्थशास्त्र का एक वो है, एक तरीका है, या मनरेगा जो है वो भी एक तरीका है रोजगार को बढ़ावा देने का। एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक परमानेंट बेरोजगारी होती है, तो ये हर सरकारें लागू करती हैं। इसको मैं रिश्वतखोरी या सब नहीं मानता हूँ। कुछ लोग जो सरकारें इस तरह की मुफ्त में रेवड़ियां बांटती हैं वो खुद भी रेवड़ियां बांटती हैं और लेकिन विपक्षी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये सब तो होता ही रहता है। इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा अगर बहुत गरीब आदमी को हो रहा है या लोअर मिडिल क्लास को हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के बैंक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो कर्ज जो वापस नहीं ले पाते
NPA, माफ कर देते, NPA हो जाते हैं।
हाँ, क्या बोलते हैं उसको,
NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मुझे याद भी नहीं रहता है NPA, अच्छा ये ऐसा शब्द है नॉन परफॉर्मिंग NPA
asset. नहीं भूलने चाहिए
नहीं, मतलब NPA जो है वो आपके कोई तस्वीर नहीं पैदा करता है, ये एक कोई तस्वीर नहीं बनाता है। दरअसल उनको मुफ्त में रेवड़ियां दरअसल ये बांटी गई, उस पर कोई बात नहीं होती। 1000 रुपये अगर किसी गृहिणी को मिल रहा है या बस में टिकट अगर मुफ्त में जा रही है कोई बच्ची, तो उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है।
भाषा आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
मैं ये खाली यही कहना चाहूंगी कि दिक्कत ये है कि ये सब हमें दिखाई देता है कि कितना दे रहे हैं, महिलाओं को कितना मिल रहा है या दलितों को कितना मिल रहा है, लेकिन चर्चा में वो नहीं आता जो कॉरपोरेट माफी होती है, जो करोड़ों अरबों रुपए में पहुंची हुई है। अगर आप हिसाब निकालें तो पता चलता है कि वहां पर जब इतनी वेव ले आप सारे कर्जे माफ कर देते हैं, मैं NPA की भी बात नहीं कर रही, मैं तो यहाँ दूसरे ढंग से बात कर रही हूँ, जो कॉर्पोरेट सब्सिडी मिलती है अगर उसका आकलन
टैक्स छूट
मिली हुई है अगर आप उसकी बात करें तब तो, लेकिन एक पिछले कुछ समय से इस तरह के जो सकारात्मक इनिशिएटिव्स हैं, पहलकदमियां हैं, उनको एक गलत चश्मे से रेवड़ी कह के, उनको रिश्वत करके, ये सब करके प्रचारित इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दरअसल मध्यम वर्ग, खाते पीते वर्ग को सूट करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब गांव की लड़कियों को साइकिल मिलती है, 1,000 रुपए मिलता है, सैनिटरी पैड मिलता है, उनके जीवन में जो फर्क आता है वो दरअसल खाए पिए मध्यम वर्ग के लोगों को इसका आभास नहीं होता क्योंकि उनको छूट दूसरे ढंग से मिल रही
है। बिल्कुल ठीक बात,
बहुत छोटा सा जवाब, और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट कोटेशंस होते हैं ना सबके, तो हरमन मैनविल का है और बहुत चरितार्थ करता है इस बात को, मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ पहले। ऑफ ऑल द प्रिपोस्टरस अजम्पशंस ऑफ ह्यूमैनिटी नथिंग एक्सीज मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म मेड बाय द हैबिट्स ऑफ पुअर बाय वेल हाउस्ड वेल वॉर्म्ड एंड वेल फेड। तो गरीबों की आदतों की आलोचना करना अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, तो अमीरों की पुरानी आदत है, वो बड़ी बात।
ठीक बात, विकास आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस पर?
हाँ सर, बहुत सी चीज़ें, जैसे मुझे लगा कि विशाल जी ने जो सवाल पूछा बड़ा, एक तो वेग है बहुत सवाल, बहुत वास्ट है, और दो चीज़ों की उन्होंने एकदम से अलग अलग रूप से तुलना कर दी। सवाल के पहले हिस्से में वो लिख रहे हैं कि आज के दौर में कई महिलाएं नौकरी और व्यवसाय कर रही हैं, दूसरे में उस हिस्से में वो कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को 1,000 रुपये देना ठीक नहीं, लेकिन वो 1,000 रुपये किसे मिलेंगे और नौकरियां कौन कर रही हैं, तो दो अलग अलग बातें हैं।
ठीक बात है,
और आप बुरा मत मानिएगा विशाल जी,
मतलब नौकरियां सारी महिलाएं आज भी नहीं कर रही, ये भी बात सच है।
तो जनरलाइज करना कि सारी महिलाएं नौकरी कर रही हैं और सबको 1,000 रुपये मिलेंगे, वो अलग अलग चीज़ें और इसके अपने राजनीतिक निहित हैं। और एक सर आखिरी चीज़ जो मैं जोड़ना चाह रहा था, जो राजेश जी ने कहा कि कोई नेता अगर खून कर देता है तो उसमें
कार्रवाई तो होगी,
कार्रवाई तो
क्राइम है, हाँ।
लेकिन सर दो चीज़ें हैं कि वो क्राइम कि आपने किसी को एकदम से हानि पहुंचाई और ये मामला जो इतना लंबे समय से चला रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि एकदम से एक जैसी ही मानदंड हो सकते हैं।
तो हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, शार्दुल से शुरू करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है शार्दुल के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा आज दो एक हफ्ते के गैप के बाद चर्चा में।
तो मेरे फिर से तीन रिकमेंडेशन है। पहला तो श्वेता देसाई की एक रिपोर्ट है, ये चुनावी बॉन्ड और इस सब के बीच एक खबर शायद मिस हो जाए, तो मुझे वो रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर अच्छी लगी कि धारावी में जो अडानी जी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं उससे क्या क्या हो सकता है, वो आपको न्यूज़ लॉन्ड्री पर अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में मिल जाएगी, वो पढ़ें। और फिर से उसमें वो गरीबों वाली बात घूम के आ जाती है कि उस उनको तो सभी डंडा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा है एक टीवी सीरीज़ है पुरानी द सिनर, और सिनर को मैं इसलिए कर रहा हूँ मर्डर मिस्ट्री वाली है कि छोटे से क्राइम से कैसे, पर इसलिए खासतौर से पहले दो सीज़न के लोग अब्यूज़ को कहते हैं कि भाई आपका अब्यूज़ हुआ था, खासतौर से बचपन में जो शारीरिक और मानसिक इमोशनल अब्यूज़ होता है, लाइक मूव ऑन। लेकिन वो समय जो लोग अब्यूज़ रहते हैं उनका जीवन कितना, वो चीज़ें आपके जीवन पर कितनी ज़्यादा असर डालती हैं, वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत, हम उस पर मेंटल हेल्थ में भी बात करते हैं, पर इस सीरियल में दिखता है खासतौर से पहले सीज़न में, बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिए, द सिनर नाम है। और तीसरा, हम बात कर रहे थे इतने दिन से चंदे की, तो हरिशंकर परसाई का एक छोटा सा व्यंग है, चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे की शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड में वो गंध आपको मिल जाएगी।
तो ये छोटा सा व्यंग है, ये तीन रिकमेंडेशन है।
विकास आप क्या करेंगे रिकमेंड?
सर एक ही रिकमेंडेशन है, एक सीरीज है अमेरिकन पॉलिटिकल ड्रामा हाउस ऑफ कार्ड्स, तो मुझे लगता है इस वो ठीक होगी, थोड़ा लंबी सीरीज है लेकिन उसमें सारे रंग आपको राजनीति के चंदे से लेकर और धंधे तक के सब नजर आ जाएंगे।
राजेश जी आप क्या रिकमेंड करेंगे?
देखिए मैं रिपोर्टिंग की पत्रकारिता की बात करूंगा। जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रकारिता का स्तंभ होता था फॉलो अप स्टोरीज। आज आप कोई भी स्टोरी ब्रेक कर दीजिए, कितनी ही वर्थ शैटरिंग हो, हलचल ला देने वाली हो, या जिसे कहते हैं धरती धकेल हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है फॉलो अप नहीं करते हैं, मेन स्ट्रीम टीवी में नहीं आता है, अखबार भी उसको इग्नोर कर देते हैं। एक वेबसाइट जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, पता नहीं आपका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक वैसी वेबसाइट है जो बहुत ही कमाल का काम कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसमें पॉलिटिकल रेटरिक नहीं होता है, सिर्फ तथ्यों के जरिए वो उन अंधेरे कोनों में रोशन करते हैं, उन अंधेरे कोनों को जो हमारी हमारा धर्म है पत्रकारिता का, जिन अंधेरे कोनों को सरकारें अंधेरा ही रहने देना चाहती हैं। जैसे कुछ वक्त पहले उन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि जो ये मोदी सरकार 3 फार्म लॉज लाई थी उसमें एक था कि आप एंटरप्रेन्योर या कॉरपोरेट को ये छूट दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो खेती का उत्पाद है उसको स्टोर कर सकता है और जब महंगा हो तब वो बेच सकता है, ये उस कानून में था। इस द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और ये कहा कि दो साल पहले से अडानी ग्रुप इसकी लॉबिंग कर रहा था मोदी सरकार से और बाद में ये बना, कानून बना। एक तो ये मुझे याद आता है। दूसरा एक 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 सीरीज उन्होंने जो है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये किया है कि जो बॉन्ड्स हैं उनके जरिए किस किसने कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया, और वो सिर्फ बीजेपी पर ही अटैक नहीं कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस ने भी उन उन संगठनों का या उन देनदारों का नाम नहीं बताया है डोनर्स का जिनसे उनको करोड़ों का चंदा मिला है, उन्होंने भी छुपाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा अंग्रेजी में है, हिंदी में मुझे नहीं मालूम कि है ये नहीं है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव अच्छा काम कर रहा है, उसको मुझे लगता है कि फॉलोअप भी होना चाहिए उन स्टोरीज का।
नहीं, बहुत बढ़िया आपने नाम सुना। हिंदी में भी कुछ जो उनकी विशेष इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसको हिंदी में भी वो ट्रांसलेट करवा कर डालते हैं, हम लोग भी उनकी स्टोरीज़ को पब्लिश करते हैं समय समय पर उनकी इन्वेस्टिगेशंस को। नितिन सेठी एडिटर हैं इसके और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये बढ़िया रिकमेंडेशन है। भाषा आप
टीवी में तो नहीं आता है, कहीं टेलीविजन में तुम्हें
हाँ, स्टोरीज वो है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज आती हैं और फिर दम तोड़ देती हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने ये केवल पत्रकारिता के ऊपर कॉमेंट नहीं, ये बेसिकली एज अ होल एक पूरे सोसाइटी के ऊपर कॉमेंट है, समाज के ऊपर भी कॉमेंट है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी चीज़ें आपके सामने आती हैं और अगले दिन आप भूल के अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं, तो आपसे भी के भी ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर देता है। भाषा आप क्या रिकमेंड करेंगी?
देखिए मैं तो दो किताबें, एक आतंकवादी का फर्जी छप्पा, आमिर खान की, मोहम्मद आमिर खान की किताब आई है हिंदी में, उसमें अंग्रेजी का तर्जुमा है लेकिन हिंदी के अंग्रेजी के बाद का जो पूरा डेवलपमेंट है वह भी मोहम्मद आमिर खान ने इसमें लिखा है। मोहम्मद आमिर खान दिल्ली के बाशिंदे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने जब वो 18 साल के थे, 14 साल जेल में रहे और उसके बाद का पूरा उन्होंने जेल के भीतर और जेल के बाहर सामाजिक पॉलिटिकल नरेशन लिखा है। बहुत मार्मिक है, हिंदी में है, बेहतरीन किताब है। और दूसरी सुधा भारद्वाज की फ्रॉम फासियाड, वो भी एक बहुत दूसरे ढंग की कहानियां हमारे पास बताती है कि किस तरह से जेल में जो लोग हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि एक देजा व्यू करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है, वो भी बहुत दिलचस्प फिल्म है, उसका हिंदी तर्जुमा भी हो गया है। और ये भारत में जो किसान आंदोलन चला उसको ये अमेरिका की धरती पे ले जाती है और वह बताती है कि अमेरिका में 20-30 साल पहले किस तरह से किसानों ने यही संकट झेला था, इसी तरह से कॉरपोरेट लूट का, और उसके बाद छोटे किसान किस तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। तो ये एक बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में यह बताया गया है कि आज जो भारत के किसान जिसको फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तीन जो कृषि काले कानून है उनकी लड़ाई अगर अमेरिका में हुई होती तो अमेरिका के छोटे किसानों और उनका ये हाल नहीं होता। तो जो कॉरपोरेट लूट है उसको बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है, इसका हिंदी तर्जुमा भी हो गया है, नसीर ने अपनी आवाज दी है। तो मैं चाहूंगी कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
ठीक बात। मेरा रिकमेंडेशन एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो हमारी सीरीज है न्यूज लॉन्ड्री, उसमें अभी भी स्टोरीज आ रही हैं, कौन किन खिलाड़ियों ने किस किस को पैसा दिया है, किस किस कंडीशन में पैसा दिया है, किसने किसके जेब में 5 रुपए थे और उसने 500 रुपए का चंदा दे दिया, ये सारी चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। तो ये सीरीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो न्यूज़ लॉन्ड्री के इसको देखें। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, करी एंड साइनाइड, द जॉली जोसेफ केस। एक NIT की प्रोफेसर थी जिनका अपने परिवार के ही 6-7 लोगों के मर्डर का उनके ऊपर आरोप लगा और वो डॉक्यूमेंट्री है, और तो उसको देखें। मैंने देखा, काफ़ी मतलब अंदर से जोड़ने वाला, बड़ा रिश्तों के कई सारी परतें हैं जिसको समझने में मदद मिलती है। ये दो रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। राजेश, भाषा, शार्दुल, विकास, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, शार्दुल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
होली आ जाएगी सोमवार को, तो सभी को होली की शुभकामनाएं,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली जमकर मनाइए लेकिन सुरक्षित मनाइए
और मन मुटाव मिटाइए, रंग के चक्कर में
भले ही आप ना पढ़े, मैं प्रदूषण के पीछे हूँ तो पढ़ता हूँ, पर मन मुटाव दूर करें, दोस्ती करें भाई।
और वो जो नजीर अकबर आबादी की नज्म है होली पे पड़ी,
उसको जरूर सुने,
देख
बहारे होली
की, गुनगुनाएं सुने,
जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की,
बहारे होली की,
क्या बात है। चलिए इसी के साथ हम आपकी चर्चा को रोकेंगे, धन्यवाद।
जब फागुन रंग झमकते हो जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की, और डप के शोर खड़कते हूँ, और डफ के शोर खड़कते हूँ, तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हूँ, तब देख बहारी होली की, हम शीशे जाम छलकते हूँ, तब देख बहारी होली की, महबूब नशे में छकते हूँ, तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की।
News Laundry is possible because of our paying subscribers. We don't run on corporate or government ads. You too can be part of changing the news model. Go to newslaundry.com/subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest News Laundry experience, download our app. Watch our shows, listen to our podcasts, read our reports. Stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.